सत्र की अध्यक्षा आदरणीय अनुसुया दीदी जी, इन्हें विशेष आमंत्रित करता हूं कि आप आकर अपने अध्यक्ष पद की स्थान ग्रहण कीजिए करेंगे और हमें सभी सभा को उपकृत करेंगे। हम सब खड़े होकर दीदी का स्वागत करेंगे। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आज के हमारे विशेष गेस्ट डॉक्टर असलेशाजी, आई एम इनवाइटिंग यू एंड आई एस और हमारे कीनोट स्पीकर आज के सत्र के हमारे कीनोट स्पीकर आदरणीय गीता दीदी जी, आप भी प्लीज स्टेज पर आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। थोड़े समय पश्चात आदरणीय कृति दीदी जी भी हमारे साथ में होंगे। आदरणीय गीता दीदी, सर्वप्रथम आज के सत्र की शुरुआत हम परमात्मा स्मृति से करते हैं, तो 3 मिनट परमात्मा स्मृति। बहुत धन्यवाद उस परमात्मा को जो आज हम सभी को ये चांस दिया है। आज के सत्र का टाइटल है बिल्डिंग यूथ फॉर बिल्डिंग बेटर वर्ल्ड। तो इसमें हम सबकी क्या भूमिका रहेगी, इस विषय पर आज का सत्र है और इसमें हम सभी विचार रखेंगे। हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती है, उनमें खास 3 वैल्यूज को प्रायोरिटी दी है, समानता, सम्मान और स्वातंत्र्य। तो आज हमें इस पार्लियामेंट्री सत्र के माध्यम से इन 3 वैल्यूज का अनुभव करने का एक मौका मिलता है कि हर कोई समान है, हर किसी को सम्मान मिलने का हकदार है और हर किसी को अपनी बात रखने का संपूर्ण स्वातंत्र्य है। तो आज उसी 3 उद्देश्य से आप अपनी बात भी प्रेजेंट करेंगे। जब बेटर वर्ल्ड की बात आती है तो बेटर वर्ल्ड क्या है, अच्छी दुनिया क्या है, हर एक की अपनी संकल्पना हो सकती है, तो उसी आधार से हम सभी अपनी बात शुरू करेंगे। तो माननीय अध्यक्षा महोदय से मैं परमिशन चाहता हूं कि हमारे आज के जो कीनोट स्पीकर है उन्हें इनवाइट करने की परमिशन। हम सबके बीच में आज के जो विषय है, विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय गीता दीदी जी को। गीता दीदी जी से आप सभी सॉरी गीता दीदी जी आपको संबोधन करें, उससे पहले हमारी स्वागत विधि हम संपन्न करते हैं। निवेदन करता हूं हमारी बहनों से, हमारे अध्यक्ष, मेहमान और कीनोट स्पीकर, इनका बैच और फूल देकर स्वागत करेंगे। हमारे अनुसुईया दीदी जी जो आज अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में हैं, वैसे दिल्ली मेपालपुर से है और एकदम शुरू से युवा प्रभाग से जुड़ी है। कई युवाओं का जीवन परिवर्तन करने का लक्ष्य उन्होंने साध्य किया है, अभी भी निरंतर वही प्रयास जारी है। दिल्ली क्षेत्र, एनसीआर क्षेत्र और संपूर्ण भारत और विदेश में भी कई जगह पर उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया है। डॉक्टर अश्लेषा बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व हमारे बीच में आज गेस्ट के रूप में है, और गीता दीदी जी जो अपनी उज्ज्वल वाणी से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। फिर मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय गीता दीदी जी को। गीता दीदी जी 35 सालों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है। यही माउंट आबू के समीप भिन्नमाल क्षेत्र है, भिन्नमाल क्षेत्र के सेंटर्स की संचालिका है। विभिन्न क्षेत्र में बहुत सारा समाजोपयोगी कार्य उन्होंने किया है। विशेष रूप से आपके सामने मेंशन करना चाहूँगा कि उन्होंने अभी तक 110 से ज़्यादा फ्री हेल्थ कैंप्स अपने क्षेत्र में आयोजित किए, जिससे सैकड़ों मरीजों का फ्री ग्लोबल हॉस्पिटल की मदद से फ्री में नेत्र का और दूसरे प्रकार की सर्जरी हुई। और इनकी सेवाओं को देखते हुए साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको डॉक्टरेट की ऑनर डिग्री से भी नवाजा गया। वैसे अभी ही थोड़े समय पहले वुमेन अचीवर अवार्ड के अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया है, और आप उनके वाणी से स्वयं अनुभव करेंगे कि कितनी प्रज्वल वाणी से सभी युवाओं को प्रेरित करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं गीता दीदी जी।
ओम शांति। स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट के इस सेकंड सेशन में अध्यक्ष महोदया, माननीय वक्ता और आप सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का मैं अभिवादन करती हूं। आज का विषय है बिल्डिंग यूथ फॉर बिल्डिंग बेटर वर्ल्ड। इन्हीं विषयों के आसपास हम बहुत कुछ वैसे सुन चुके हैं। क्यों ये कहा जा रहा है कि यूथ को बनाना पड़ेगा? अगर देश को बनाना है, दुनिया को बेटर बनाना है, तो मैं कुछ आंकड़े आपके साथ में शेयर करना चाहती हूं। यूनेस्को ने कुछ वक्त पहले विश्व के कुछ आंकड़े जारी किए थे, जिसके अनुरूप दुनिया में लगभग 50% चिल्ड्रन स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपना बचपन बिताते हैं, यानी कि यूथ एज में आने तक उनके जीवन में ऑलरेडी उन्होंने अपने आसपास स्ट्रेस को देखा होता है, फील किया होता है। अबाउट 72% स्टूडेंट्स अपने लाइफ में, एजुकेशन फील्ड में या जहां भी फैमिली में जो टेंशन्स क्रिएट होते हैं, उसके बारे में उनके पास कोई भी गाइडलाइन नहीं होती और वो जेल नहीं पाते हैं। और इसीलिए चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट की आज के समय में बहुत महती जरूरत पड़ने लगी है। चाइल्ड साइकोलॉजी में काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी है। मैं ये प्री यूथ एज की बात कर रही हूं। 2006 का एक आंकड़ा बताया गया है, जिसमें 5,857 स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन में फेल्यूअर के कारण सुसाइड कमिट किया था हमारे देश में। आप समझ सकते हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। पर 3 सेकंड, 3 सेकंड में एक सुसाइड से मौत हमारे देश में हो रही है, डेढ़ घंटे का ये पार्लियामेंट्री सेशन है, इसको पूरा होने तक 1800 लोग सुसाइड कमिट कर चुके होंगे और मैक्सिमम सुसाइड कमिट करने वालों की एज 18 से 45 साल की होती है। ये मैं नहीं, बाकायदा रिलीज हुए स्टेटिस्टिक बता रहे हैं। 21st सेंचुरी में नंबर वन डिजीज कहा गया है डिप्रेशन को, और इस डिप्रेशन को झेलने वाला युवा कैसे किसी बेटर वर्ल्ड की कल्पना तक पहुंचे, ये हम सभी को सोचना है। भारत के आईटी प्रोफेशनल्स पूरे दुनिया में डंका बजा रहे हैं, भारत की नाम को ऊंचा ले रहे हैं, लेकिन एक करुण वास्तविकता है, 27% ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स आर एडिक्टेड बाय नार्कोटिक ड्रग्स। दिस इज फैक्ट। और इस सिचुएशन के कारण आज अगर हम युवाओं को बनाने की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, मैं ये कहूंगी अनिवार्य है। इसके बिना कल्पना करना बेहतरी की वह भी व्यर्थ होगी। परमपिता परमात्मा का ये आह्वान आप सब के लिए यूं ही नहीं है, Y20 के अंतर्गत भी युवाओं के लिए हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ तय किया गया, क्योंकि वर्तमान यूथ एज के जितने भी संसार में लोग हैं उनको अपने वर्तमान को अच्छी तरह से यूज करने की अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हेल्थ के लिए एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी बहुत सी चीजों के सहारे जाते हैं। यहां भी हमने बहुत सी फिजिकल वेलबींग की बातें की, बहुत सी अच्छी चर्चा हुई है, लेकिन एज ए स्पिरिचुअल काउंसलर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि नेचुरोपैथी, एलोपैथी या होम्योपैथी आपने अपनाई होगी, पर वास्तव में आज के यूथ और आज के समग्र समाज को अगर जरूरत है तो वो है, हम सब के लिए जरूरी है सिंपथी। और ये सिंपथी अपनाने से हम एक दूसरे को आगे ले जाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय जीवन की कुछ समस्याएं हैं। एक बहुत अच्छे ऑथर ने ये बातें लिखी है कि एक आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग डर और इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं। आज मैं अच्छे से बैठा हूं, कल मुझे ट्रेन में जाना है, पता नहीं ट्रेन कैंसिल हो गई होगी तो, रास्ते में पेड़ गिर गया है, रास्ता बंद होगा तो, घर पहुंचने के बाद मेरे काम पेंडिंग है उसका क्या होगा। बहुत सी चीजें अंदर ही अंदर हमारे चलती रहती है। एम आई राइट? डर, पता नहीं कौन सा हिडन कोई ना कोई फियर हम ऑलवेज फेस करते हैं। दूसरी एक समस्या है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए, खास करके यंगस्टर्स, ब्लेम करते हैं या तो अपने पेरेंट्स को, या तो अपने बचपन के दिनों को, या अपनी परवरिश को, या अपने फ्रेंड्स को, या अपने टीचर्स को, या अपने एजुकेशन सिस्टम को, जैसे कि आपने भी यहां पे कल चर्चाओं में सुना। और जब तक हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तब तक हम कभी भी सॉल्यूशन किसी चीज का नहीं कर पाते हैं। एक और चीज है कि आज के युवा के अंदर जोश के साथ होश होना, इस बैलेंस की कमी है। कभी वो जोश में आता है तो वो बहुत कुछ कर गुजरने के लिए समग्र ताकत लगा देता है, लेकिन कभी जब वो होश में आता है तो वो ऐसा टाइम होता है जब उसके पास एनर्जी बची नहीं होती है। तो कैसे हम दोनों को साथ लेते हुए चल पाएं, इस पर फोकस करना आज बहुत जरूरी है। आज हर युवा अपनी शक्ति, खास करके Y20 के अंतर्गत जब हम स्पोर्ट्समैन से बहुत जगह पर मिले तो मैंने एक ही बात कही कि मैं नहीं जानती हूं कि स्पोर्ट्स में बहुत सारी वैल्यूज की जरूरत है, मैं कोई बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन नहीं रही हूं, लेकिन गेम जिंदगी का हो या मैदान का, एक लाइन में अगर मैं कहूं तो यही है कि जीतने के लिए खेलना चाहिए, किसी को हराने के लिए नहीं। और आज हमारी शक्ति जीतने में कम, किसी को हराने में ज्यादा खर्च हो रही है, और इसलिए हम सही जगह पर एनर्जी नहीं लगा पा रहे। एक और चीज है, आज का युवा कहता है मुझे कोई समझता ही नहीं है, मेरी ओर अटेंशन नहीं है, समझे जाने की भूख ये देखा गया है। मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे नहीं समझती है, मेरा साथी मुझे नहीं समझता, मेरे टीचर्स को नहीं पता है मुझे क्या चाहिए, कोई मुझे समझता ही नहीं, बस कोई समझे। लेकिन प्रश्न ये है कि मैंने उस व्यक्ति को जिनसे मुझे अपेक्षा है उन्हें समझने की कोशिश कितनी की, और वहां पर सोचने के लिए आवश्यकता है कुछ साइलेंस में जाना। एक और समस्या है कि हमारे जीवन के अंदर दो चीजें चल रही है पैरेलल, एक हमारे घर के हमारे अपने कुछ सिद्धांत है, हमारे मम्मी पापा ने हमें कुछ सिखाया है, हमारे परिवार के कुछ अपने मर्यादाएं हैं, सिद्धांत है, वो कुछ और तरफ हमें खींचते हैं। और जब हम आउटर वर्ल्ड में जाते हैं, जैसे एक गांव का व्यक्ति शहर में जाता है, कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए विदेश चला जाता है, तो वो जो चकाचौंध भरी बाहरी दुनिया में जब जाता है युवा, तो कोई अलग ही मर्यादा और कुछ अलग ही सिद्धांत उनके सामने होते हैं, और वो घर के और उस आउटर वर्ल्ड के दोनों के सिद्धांतों के बीच में ये तय नहीं कर पाता है कि आखिर मुझे किस आधार पे चलना। और वहां जो इंटरनल स्ट्रगल वो फेस करता है, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण दुनिया में बेटरमेंट नहीं दिखाई देती है, हमारी एनर्जी उस स्ट्रगल में भी जाती है। तो हम कहेंगे कि इसका समाधान क्या है। अगर ये सात मुख्य समस्या है तो उसके सात मुख्य समाधान भी है जो मैंने सोचे हैं, क्योंकि जैसे कोई अचानक में पेपर आता है, ऐसे मेरे सामने भी आज एक अचानक में पेपर आया और मैंने थोड़ा सा आपके लिए चिंतन करके ये तैयार किया है। फर्स्ट थिंग हमको करना है वो ये है कि जीवन में कोई भी चीज आ जावे, प्रोएक्टिव बने, रिएक्टिव नहीं। हर चीज में कुछ न कुछ, जैसे यहां से कल एक बात की चर्चा हुई थी कि किसी भी गेम में या तो कोई जीतता है या तो कोई सीखता है। हम कभी भी ना सोचे कि मैं हार गया। अभी भी एक गेम हुई, बहुत से लोगों का चेहरा थोड़ा सा मायूस था कि हम कुछ कर नहीं पाए, माइनस पॉइंट भी इतने सारे ले लिए, नो प्रॉब्लम, आपने कुछ न कुछ सीखा। हर चीज या तो हमें जीत दिलाती है या तो हमें कोई सीख दिलाती है, इसको कहते प्रोएक्टिव नजरिया। लेकिन रिएक्टिव नजरिया हम सब जानते हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी। तो पहला समाधान आध्यात्मिकता से भी प्राप्त होता है कि हम प्रोएक्टिव बने। दूसरी चीज, जब भी आपको कोई अच्छा काम शुरू करना है तो आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, कैसे करूं, कब करूं, कौन सा करूं, किसके साथ करूं, करूं कि नहीं करूं। लेकिन एक फॉर्मूला अगर हम ध्यान में रखें कि अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, किसी भी चीज का स्टार्टिंग कुछ भी हो, कितना भी मुश्किल पाथ हो, लेकिन उसकी मंजिल क्या है, अगर उस मंजिल को सामने रखते हुए काम शुरू करेंगे तो शायद हम बहुत सफल होंगे। तो बेटरमेंट यूथ के अंदर ये होनी जरूरी है, जीतने में अपनी शक्ति लगाएं और आसपास की चीजों में न लगाएं। वो बताते हैं ना कि एक कछुए की रेस हुई थी और उनको एक टावर पे चढ़ने का टास्क दिया गया था, आसपास बहुत से लोग इकट्ठे हुए कि देखते हैं कछुए और टावर पे कैसे चढ़ेंगे। तो चारों ओर से हूटिंग कर रहे थे, रेस स्टार्ट हुई, एक कछुआ गिरा, दूसरा उल्टा हो गया, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, सब लोग बहुत आनंद ले रहे थे, लेकिन एक कछुआ चलता गया चलता गया चलता गया और वो पहुंच गया टावर पे, विनर घोषित हुआ, बहुत ज्यादा अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, उसका इंटरव्यू लिया गया और उसे पूछा गया कि क्या वो चीज थी जिसने सबको तो पीछे रख दिया और तुम जीत गए। वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, तब बार बार पूछा गया लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। लास्ट में पता चला कि वो गूंगा भी था और बहरा भी था। उसकी जीत का कारण क्या था, उसकी जीत का कारण क्या था? यही था कि वो कुछ सुन नहीं रहा था कि लोग क्या कहते हैं। आजकल हम बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें लगा देते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। तो अपने जीतने पे, अपने लक्ष्य पे, अपनी मंजिल पे फोकस करना है। अपने आप को सबको समझने के लिए हमेशा तैयार रहना है, तैयार रखना है। सबको समझे, माता पिता क्यों कहते हैं, कोई बात टीचर्स कहते हैं क्यों कहते हैं, क्यों कहा जा रहा है यहाँ 7 बजे आकर के शिविर करो, क्यों कहा जाता है ब्रह्म कुमारीज में आयो 4 बजे का मेडिटेशन आकर के करो, क्यों कहा जा रहा है समझने की कोशिश करो, तो आप कर पाते हैं। और लास्ट एक चीज, रचनात्मकता में शक्ति लगाएं, डिस्ट्रक्शन में नहीं। एक बार एक मूर्तिकार को कहा गया कि आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं पत्थर से, तो उसने एक ही बात कही थी कि मैं मूर्ति नहीं बनाता हूं, मूर्ति तो उस पत्थर में होती है, मैं केवल उसके आसपास का अनवांटेड पार्ट है उसको रिमूव करता हूं, मैं इतना ही काम करता हूं। तो हम सब के अंदर बहुत कुछ अच्छा है, जो बनना चाहते हैं उसकी सारी सामर्थ्य हमारे अंदर है, लेकिन केवल अनवांटेड चीजें, जो फियर है, जो अननेसेसरी थॉट्स है, नेगेटिविटी है, इन सबको केवल हमें रिमूव करना है। ताकत इसमें लगानी है कि बस वो मेरी मूर्ति बाहर आ जाए। और लास्ट वन ये था कि समय प्रति समय अपनी धारी आरी की धार को तेज करें। एक लड़के ने बहुत कोशिश की कि मैं आज जितने पेड़ काटता हूं, कल और काटूं, परसों और काटूं, लेकिन दिनों दिन उसका काम ठप होता जा रहा था, धीमे धीमे कम होता जा रहा था। बाद में किसी बुजुर्ग ने उसको कहा कि तू मेहनत तो पहले जितनी कर रहा है, लेकिन कमी क्या थी कि वो जिस कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था उस कुल्हाड़ी की उसने धार नहीं निकाली थी। सो शार्पन योर एक्स, ये बहुत जरूरी है। तो ये कुछ बातें बेटर लाइफ के लिए अगर युवा समझ लेगा तो मुझे लगता है कि उसे कहीं भी न मानसिक रूप से न सोशली पिछड़ना होगा, वो हमेशा ही आगे बढ़ेगा। और जिंदगी में कभी भी कहीं जरूरत पड़े कि हम रुक रहे हैं, हम थक रहे हैं, हम बीमार हो गए, हम निराश हो गए हैं, कॉमन बातें हैं, निराशा भी आती है, तो एक डॉक्टर को मैं सजेस्ट करूंगी, आप जरूर मिल लेना। उसका नाम है डॉक्टर अली। आप जानना चाहेंगे वो कौन है? किसी भी समस्या का उसके पास समाधान है, डॉक्टर अली। और डॉक्टर अली मींस ए फॉर एक्सेप्टेंस, एल फॉर लिसनिंग एंड आई फॉर इंट्रोस्पेक्शन। बस 3 काम कर लेना, जो परिस्थिति जैसी है उसको एक्सेप्ट कर लेना, जो भी लोग कह रहे हैं उसमें ध्यान दे देना, सुन लेना, कोई बात नहीं, कुछ तो मिल ही रहा है, और इंट्रोस्पेक्शन करना, बजाय ब्लेम गेम के हम इंट्रोस्पेक्शन करें। ये है डॉक्टर अली, आप उसका नंबर रख लीजिएगा, आप उससे जरूर मिलते रहिएगा, आप बेटर लाइफ के लिए तैयार होंगे, क्योंकि युवाओं के कंधों पर ही इतिहास चलता है। और इसीलिए हम सब युवाओं को इस दिशा में तैयार होना है। और विशेष करके मैं अंत में यही कहूंगी कि सफलता के लिए 5S फॉर सक्सेस। फर्स्ट S, ऑलवेज स्माइल ऑन योर फेस। अभी भी कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं। स्वीटनेस ऑन योर टंग, जो भी बोलना है प्यार से। बाहर गए, आपका जूता नहीं पड़ा है, किसी ने एक तरफ फेंक दिया, वो पानी में गीला हो गया है, क्या कहेंगे? बहुत स्माइल के साथ, कितना अच्छा किया, और भी थोड़ा सा दूर फेंक देता, कर सकते। मीठा बोलना है। तीसरा, स्टेबिलिटी इन योर माइंड। मंकी हैबिट्स को छोड़ दे, क्योंकि गहराई में जाने से ही पानी मिलता है। स्टेबिलिटी इन योर माइंड। फोर्थ एस, सिंप्लिसिटी इन योर लाइफ। कल यहां से डॉक्टर स्नेहा जी बता रही थी कि ब्रांड क्या है, है ना। आजकल युवाओं को ब्रांड बड़ा आकर्षित करता है, लेकिन सबसे बड़ा ब्रांड मुझे खुद को बनाना है, और वो है कि मैं सिंपल रहूं। मेरे विचार बताएं कि मैं क्या हूं, मुझे ये नहीं बताना है कि मैं कौन सी कंपनी का जूता पहनता हूं, या कौन सा ड्यू यूज करता हूं, या कौन सी मेरी फेवरेट डिश है, या मैकडोनाल्ड की कॉफी पीता हूं, या KFC में जाता हूं। इन चीजों से कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या हूं ये मेरी सोच है। तो अगर हम सिंप्लिसिटी को अपनाएंगे, तो फोर्थ है सिंप्लिसिटी इन योर लाइफ, एंड फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट सिंपथी फॉर ऑल। तो कुछ ये है, इंट्रोस्पेक्शन करके आप अपने आप में इस सुंदर परिसर में आए हैं। तो ये किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि बुझे दीप से दीप संजोया नहीं जाता, बुझे दीप से दीप संजोया नहीं जाता, उलझे तार से हार पिरोया नहीं जाता। दुनिया को बदलना है तो हे युवा तुम्हें खुद बदलना होगा, क्योंकि गंदे नीर से चीर को धोया नहीं जाता। थैंक यू सो मच। शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आज का हमारा सत्र थोड़ा फास्ट है, इसलिए आप सभी कृपया थोड़ा फास्ट फास्ट आइएगा। अध्यक्ष महोदया जी, आपसे परमिशन चाहिए, हमारे सदन के सदस्य से सुनना चाहते हैं सभी। अध्यक्ष महोदया की परमिशन से मैं सब सर्वप्रथम इनवाइट करता हूं। पहला ग्रुप थोड़ा सा क्विक आएंगे और नेक्स्ट ग्रुप भी तैयार रहेंगे। आपको 4 मिनट मिलेंगे, 3 मिनट पे बेल बजेगी, 4th मिनट पे आपको फिनिश करना है ना। इसमें माइनस पॉइंट नहीं मिलेंगे, सीधा अगर एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं तो 0 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, राइट। फर्स्ट ग्रुप, और स्टेज पे एक ग्रुप के 2 लोग आएंगे, बाकी अगर कोई सपोर्ट करना है तो स्टेज के नीचे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप है द पीस मेकर्स, सेकंड अनस्टॉपेबल यूथ, थर्ड द पाथ फाइंडर्स, फोर्थ राइजिंग स्टार्स, और फिफ्थ पीस मास्टर्स। आप तैयार रहेंगे। सबसे पहला द पीस मेकर,
ओम शांति। माननीय अध्यक्ष महोदया, द स्पीक मेकर पीस मेकर ग्रुप की ओर से मैं हर्षिल,
मैं स्नेहा मेहता,
अपने टॉपिक कोऑपरेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे।
सब में हो सहयोग भावना, सब दे सबको प्यार, सब में हो सहयोग भावना, सब दे सबको प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुख में ये संसार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुख में ये संसार। इसी के साथ मैं आपको कोऑपरेशन का मीनिंग बताऊंगी। व्यक्तिगत तौर पर या सामाजिक तौर पर किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह के साथ साथ मिलना ही कोऑपरेशन है। इन शॉर्ट, सम और विषम परिस्थितियों में साथ मिलना ही कोऑपरेशन है।
मैं अपने सहयोगी के बात पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि विचारधारा चाहे ना मिलती हो और उसमें भी आप अगर साथ देते हैं तो उसे भी सहयोग कहते हैं। अब हम कुछ अलग टाइप के कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इमोशनल कोऑपरेशन है, फिजिकल कोऑपरेशन, स्पिरिचुअल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सोशल कोऑपरेशन।
डिप्रेशन में किसी की मदद करना ही इमोशनल कोऑपरेशन है। जैसे कि आज का ग्रुप में डिस्कशन हुआ कि एक व्यक्ति, एक भाई जी की रियल लाइफ है कि वो अपनी लाइफ में सुसाइड की तरफ जा रहे थे, ताकि क्यों, क्योंकि वो डिप्रेस थे अपने करियर को लेकर। लास्ट मोमेंट पर उन्होंने अपनी फैमिली को कॉल किया, तो उन्होंने अपनी फैमिली को बोला कि मैं करियर में अगर कुछ ना कर पाया तो क्या होगा। तो उनके पेरेंट्स ने उनको बोला कि नो प्रॉब्लम, अगर तुम नहीं कर पा रहे बस कोशिश करो और हम कुछ और सेटल डाउन करेंगे। इससे उनको मोटिवेट हुए, उनको नई जिंदगी मिली। तो ये है इमोशनल कोऑपरेशन जो कि उनकी फैमिली ने उनको दिया। नेक्स्ट है डॉक्टर अपना सहयोग दे रहे हैं, और कृषि में फार्मर्स अपना सहयोग दे रहे हैं, इंजीनियर्स अपना सहयोग दे रहे हैं। ये है फिजिकल कोऑपरेशन।
किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं और उसमें हम कोई टाइप का सहयोग देते हैं, कोई डोनेशंस करते हैं और विक्टिम्स को हेल्प करते हैं, तो वो हम मेरे हिसाब से वो एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया। और यहाँ पे आप जानते हैं कि उद्योगपति है, बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस वर्ड यूज करते हैं अपने ही इसमें, जो देश में बहुत कॉपरेशन दे रहे हैं देश की उन्नति के लिए। और पिछले 3 दिनों में यहाँ पे मैंने सीखा कुछ कि स्पिरिचुअल कॉपरेशन क्या होता है, कि सबके लिए सद्भावना, शुभ विचार और योग से सहयोग करना, ये मैंने पिछले 3 दिनों में यहाँ पे सीखा है।
इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपरेशन, 3 लाइनें हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना। लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी हो जाती है, बर्डन कम हो जाती है, पहाड़ जैसा कार्य राई के जैसा हो जाता है।
और इसमें हमारी एनर्जी भी सेव हो जाती है, हम टाइम भी बचा सकते हैं, और कोई बनिया होएगा तो वो तो कहेगा हमारा पैसा भी बच जाता है कोऑपरेशन में।
और हर चीज की एक लिमिट होती है। ओवर कोऑपरेशन भी कई बार नुकसान देता है, जैसे कि कोऑपरेट प्राप्त करने वाला ओवर डिपेंडेंट हो जाता है, उसकी क्रिएटिविटी लॉस हो जाती है, थिंकिंग स्किल कम हो जाती है। जरूरत से ज्यादा कोऑपरेट करने पर, ज्यादा लोग कोऑपरेट करने पर टाइम मैनेजमेंट और कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो इन शॉर्ट, तन मन धन से साथ देना ही कोऑपरेशन है।
जैसे प्रधानमंत्री जी बिना देश के कोऑपरेशन, बिना सरकार के कोऑपरेशन नहीं कर सकते, और जैसे फैमिली बिना कोऑपरेशन के नहीं चल सकती है, वैसे ही हमारा टॉपिक बिना आपके तालियों के कोऑपरेशन से खत्म नहीं हो पाएगा। धन्यवाद
सो मच।
थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ग्रुप, अनस्टॉपेबल यूथ, द पाथ फाइंडर्स दूसरे पोडियम पे तैयार रह सकते।
गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अनुपम है और मेरा साथी।
मेरा नाम प्रज्वल है।
मैं आज अपने अनस्टॉपेबल यूथ की तरफ से ऑनेस्टी के ऊपर अपने विचार आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं आदरणीय स्पीकर महोदय और अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहता हूँ।
सो हम आज का हमारा टॉपिक है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक ऐसा वर्ड जिसे सब फेमिलियर है, बट हर एक व्यक्ति के लिए इसकी हर एक अलग अलग डेफिनेशन है। उनमें से एक डेफिनेशन को मैं कहना चाहूंगा कि मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स को ध्यान में ना देकर अपने वैल्यूज और एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज ना करना। लाइक अगर सपोज सामने वाला बंदा चोरी करके माखन खा रहा, लेकिन फिर भी मैं अपनी सूखी रोटी में अच्छी नींद ले सकता हूँ। फिर एक और चीज है कि जैसे ही हमको अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस नहीं होती तो हम ऑनेस्ट नहीं हो सकते। सपोज करिए कि अगर मुझे किसी ने पोछा मारने बोला है, मैंने पोछा तो लगा लिया, अब 2 मिनट बाद एक बिल्ली जा रही है और गंदा कर रही है, लेकिन मेरा काम सिर्फ पोछा मारना अगर होता, अगर ये मेरी सेंस में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फ्लोर तो गंदा ही होगा ना। सो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की जरूरत है, और यहाँ पर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने की जरूरत है। मेरा काम सिर्फ पोछा मारना नहीं है, मेरा काम इस फर्श को साफ रखना है। अगर वो मेरी एक सेंस में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो मैं अपना काम ऑनेस्टली कर पाऊंगा। और इसमें भी बहुत सारे प्रकार है जिसमें मेरे भाई आपको गाइड करेंगे।
सो इसमें फील्ड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल लेवल, फैमिली लेवल एंड सोशल लेवल, जिसमें पर्सनल लेवल बहुत बेसिक पिलर है। जो व्यक्ति अगर पर्सनली ऑनेस्ट नहीं होगा वो फैमिली और सोशली ऑनेस्ट नहीं हो सकता। जैसे कि अब पर्सनल लेवल पे क्या कैसे समझते हैं कि मैं खुद से बोल दूं कि मैं खुद के साथ ऑनेस्ट हूं, तो मैं पर्सनल ऑनेस्ट थोड़ी ना हो जाऊंगा। उसमें है कि जैसे सुबह से उठकर और शाम के सोने तक जो भी आप वर्क करते हैं वो ऑनेस्टी के साथ करना। जैसे मैं खाना खा रहा हूं या मैं सो रहा हूं या मैं पढ़ रहा हूं, वो ऑनेस्टी के साथ कर रहा हूं। लाइक दैट अगर मैं पढ़ रहा हूं और साइड में फोन भी यूज कर रहा हूं अब मेरे फादर या कोई भी मदर आए बोले कि क्या कर रहा है, मैंने कहा पढ़ रहा हूँ, उनके जाने के बाद फोन स्टार्ट यूज करना शुरू कर दो तो वो कहाँ की ऑनेस्टी है? वो खाने से क्या समझते हैं? तो खाने से ये ऐसा थोड़ी ना है कि ऑनेस्टी कोई घी की तरह है कि भाई चम्मच घी डाली और ऑनेस्टी खा लिया। तो ऐसा है कि आपको पता है कि जो जंक फूड है वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, फिर भी हम खा रहे हैं ये जानते हुए कि वो लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी को हार्म करेंगे, ठीक है ना? तो वो किसके साथ डिसऑनेस्टी कर रहे हैं? हम अपनी बॉडी के साथ, इंटरनल आउट ऑर्गन्स के साथ, लेकिन वो ध्यान में रखते हुए फिर भी खा रहे हैं। तो अभी हम फैमिली के एक जो हमारा पॉइंट है फैमिली के बेसिस पे, उसमें फैमिली में क्या है कि हमें ट्रांसपेरेंस होना पड़ेगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। आजकल सबसे मेन जो दिक्कत है वो ये है कि जो पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में एक गैप बना हुआ है। चिल्ड्रन अपने बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है जो दोस्तों के साथ में है, वो उनसे सच बताने से पहले अपने दोस्तों को बताएंगे, वो गैप बना हुआ है, उसको ओवरकम करना है।
हाँ, सो बेसिकली हमें हमारे रिश्तों में हमारे शब्दों का चयन सोच समझ कर करना है ताकि हम हमारे रिश्ते भी ऑनेस्टली ही निभा पाए। और एंड में हम कंक्लूड करना चाहेंगे, परमार्थ को आगे रखकर स्वार्थ को पीछे रखिए। थैंक यू।
थैंक यू। नेक्स्ट ग्रुप द पाथ फाइंडर्स, फिर उसके बाद राइजिंग स्टार्स। अगर आपके ग्रुप में कोई छोटा एक्ट करना चाहते किसी भी ग्रुप में तो ऊपर तीन लोग मैक्सिमम अलाउ होंगे, ठीक है? द पाथ फाइंडर्स, टाइम स्टार्ट नाउ।
रिस्पेक्टिव स्पीकर मैम, जूरी मेंबर्स और मेरे पार्लियामेंट के सभी साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रजनीश मलिक, मेरे साथी आशीष के साथ, वी आर रिप्रेजेंटिंग पाथ फाइंडर्स ग्रुप और हमारा आज का टॉपिक है प्योरिटी। मैम, विद योर परमिशन, पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। हम सब सुख और शांति को खोज रहे हैं। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि सुख बेटा है और शांति बेटी है, और इनकी मां पवित्रता है। अगर हमने पवित्रता को नहीं अपनाना है तो हमें अगर हमें सुख और शांति को पाना है तो पवित्रता को अपनाना ही होगा, तभी ये मुमकिन है। पवित्रता के कई आयाम है हमारे जीवन में, जैसे तन की पवित्रता, मन की और धन की। सबसे पहले बात करते हैं तन की पवित्रता से। तन की पवित्रता संबंध है साफ सफाई से है, खान पान से है और ब्रह्मचर्य से है। साफ सफाई में हमारा वातावरण कितना साफ है, हम अपने कपड़े कितने साफ सुथरे रखते हैं, उससे है। दूसरा, जब खान पान की बात करते हैं तो हम सात्विक भोजन खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि आप सबको पता ही होगा जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो आपका डायरेक्टली कनेक्शन है आपके अन्न के साथ, तो आपका खान पान भी सात्विक और पवित्र होना चाहिए। तीसरा, ब्रह्मचर्य। कल डॉक्टर साहब ने ही बताया था कि अगर हम ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है। सेकंड, हम बात करते हैं मन की पवित्रता पे, जो कि तन की पवित्रता से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मन की पवित्रता में हम हमारी भावनाएं, हमारे विचारों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले तय होती हैं चीजें कि हम हमारे मन को भोजन क्या दे रहे हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं। अगर हम अच्छा देखेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा, हमारा मन शांत रहेगा और स्थिर रहेगा। अगर हम गुस्से वाली चीजें और ईर्ष्या वाली चीजें ज्यादा देखेंगे तो हमारा मन दुखी और अशांत होगा। ये वैसे ही है जैसे होगा इनपुट वैसा होगा आउटपुट। जैसा देखोगे वैसा सोचोगे और जैसा सोचोगे वैसा हम बन जाएंगे। तो हमारे विचारों का पवित्र रखना बहुत जरूरी है, मन को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग हमारी दृष्टि से ही हमारे विचारों को समझ जाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप सबको भी अंदाजा लग जाता होगा कि सामने वाला बंदा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, बहुत बार हम अंदाजा लगा लेते हैं।
तन और मन के साथ साथ धन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उसकी पवित्रता और प्यूरिटी की बात हम करेंगे, क्योंकि एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक साधु महात्मा थे जिनको प्यास लगी तो एक कुएं के पास चले गए, और जैसे ही वो पानी पीते हैं तो उनके मन में ये विचार आता है कि वो बाल्टी ही लेके मैं चला जाऊं। तो वो सोचते हैं कि ऐसा संकल्प मेरे मन में, ऐसा विचार मेरे मन में आया ही क्यों। और तब किसी ने बताया कि वो जो कुआं खोदा गया था वो एक चोर ने चोरी के पैसे से ही खुदवाया था। तो इसी से ही पता चल सकता है कि जो धन हम अर्जित करते हैं उसमें प्यूरिटी होना कितना ही महत्वपूर्ण बात है। और आज जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहां हम पवित्रता की बात तो जरूर करते हैं, प्यूरिटी की बात जरूर करते हैं, और उसी के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि वहां पे थोड़ी सी मिलावट भी आ चुकी है, मिलावट थोड़ी सी नेगेटिव थॉट्स का, मिलावट थोड़ी सी नेगेटिव चिंताधारा और चेतना का। तो हम सभी को अपने अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है, और क्योंकि हम सभी जानते हैं जैसी होगी स्मृति वैसी होगी वृत्ति, जैसी होगी वृत्ति वैसी होगी दृष्टि, जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी कृति, और जैसी होगी कृति वैसी होगी सृष्टि। धन्यवाद।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू। नेक्स्ट राइजिंग स्टार्स, देन पीस मास्टर्स तैयार रहेंगे। राइजिंग स्टार्स जल्दी से आ जाए, आपका टाइम शुरू हो गया है। पीस मास्टर्स तैयार रहे दूसरे पोडियम पर।
ओम शांति एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन प्रेजेंट ओवर हियर। हम टीम राइजिंग स्टार्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं हर्षल
और मैं आशीष कुमार सिंह।
आज शांति इस गुण के विषय में आप सबसे चर्चा करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदया से परमिशन चाहूंगा।
अपना पॉइंट रखने से पहले सबसे पहले मैं एक स्टोरी की मदद लूंगा जो अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। एक बार एक भक्त अपने भगवान की पूजा करता है। भगवान कहते हैं बता बेटा तुझे क्या चाहिए। वो कहता है भगवान मुझे दुनिया की सारी खुशियां दो। तो भगवान कहते ले बेटा ये सारी खुशियां हैं, जो ले जाना चाहता ले जा। वो बंदा क्या करता है उठा के ले जाता है सारी खुशियां। एक चीज रहती है जो गिर जाती है नीचे, तो भगवान क्या करते हैं उस चीजों पे अपना पांव रख देते हैं। फिर देवी जी आती है कहती है आप हंस क्यों रहे हैं। कहता है कि जो जरूरी चीज है वो तो लेकर ही नहीं गया। कहा वो क्या जरूरी चीज थी। कहा कि वो जरूरी चीज ये थी कि उन सारी चीजों में वो चीजें नहीं मिलेंगी। कहा क्या। कहा वो शांति है जो मेरे चरणों के नीचे है। और सबसे बड़ी चीज शांति एक वो हथियार है, शांति एक वो हथियार है जिसमें सब्र की ताकत होती है, पेशेंस की ताकत होती है, और ये ताकत जिसके पास आ गई वो सारे ब्रह्मांड को जीत सकता है। और सबसे बड़ी चीज, चीजों में खुशियां नहीं मिलती, चीजों में शांति नहीं मिलती, शांति में चीजें मिलती हैं, शांति से चीजें मिलती हैं। सॉरी।
तो शांति इस गुण को आइए कुछ प्रश्नों के आधार पर समझते हैं। शांति अंदर है या बाहर है। शांति रिक्रिएशनल प्लेसेस, ट्रिप्स, इवेंट्स आदि करने से मिलती है, या शांति हम आत्मा का निजी गुण है। ये प्रश्न हमको खुद से पूछना होगा। दूसरा, शांति डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। क्या शांति गोल्स सेट करने पर, दूसरों की मदद करने पर, मटेरियलिस्टिक चीजों को एक्वायर करने पर मिल सकती है, कि शांति संकल्प बोल व कर्म करने से पहले भी मिल सकती है। तीसरा, एक शांत व्यक्ति की निशानियां क्या होगी। एक शांत व्यक्ति के चेहरे पर चमक होगी, वो हार जीत में एक समान होगा, वह विपरीत परिस्थिति में भी बहुत शांत रह सकेगा, उसका एटीट्यूड एवरीथिंग इज ओके वाला होगा, उसके संकल्पों की गति और क्वालिटी बहुत श्रेष्ठ होगी, वह जीवन में होश जोश में कभी कार्य नहीं करेगा, सदा होश में रहकर कार्य करेगा और सदा रियलिस्टिकली सोच करके बात करेगा। चौथा, शांति के शत्रु कौन है। तो जो हम पांच विकार सुनते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये शांति के पांच शत्रु हैं। उसके साथ साथ डिपेंडेंसी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या वैभव पर बहुत डिपेंडेंसी शांति का शत्रु है। इवन कंफर्ट जोन एक शांति का शत्रु है। पांचवा, शांति अपने आप बनी रह सकती है, बिल्कुल बनी रह सकती है, अगर हम सेल्फ कंट्रोल अफर्मेशंस का अभ्यास करें और खुद से बात करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, तो शांति निरंतर बनी रह सकती है। छठा, शांति का ओरिजिन क्या है। तो शांति का ओरिजिन, जैसे हमने कहा कि आत्मा का निजी गुण शांति है, उसी प्रकार परमात्मा जो है वो शांति के सागर है। तो जब हम शांति के सागर से कनेक्ट करके स्वयं को भरते हैं तो हम शांति का निरंतर अनुभव कर सकते हैं। शांति एक स्टेट है, उस स्टेट में निरंतर रहने के लिए हमको ये अभ्यास करने की आवश्यकता है। अंत में, शांति के दो प्रकार हैं। पहला तन की शांति, दूसरा मन की शांति। तन को स्थिर रखना तन की शांति है, मन में संकल्प कम चलना और स्थायी रहना ये मन की शांति है। तो हमको निरंतर दोनों की शांति निरंतर रहे इसका प्रयास करना है।
At last, I would like to conclude myself. इरादे नेक होते हैं तो सपने साकार होते हैं। इरादे नेक होते हैं तो सपने साकार होते हैं। अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते भी आसान होते हैं। शांति कहीं नहीं है, शांति आपके अंदर है, आपको उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो खुद को एनालाइज करने की, खुद में झांकने की, खुद में इनर जर्नी करने की, आपको शांति जरूर मिलेगी।
थैंक यू पीस मास्टर्स।
ओम शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय और स्टेज पर मंचासीन अतिथि और जूरी मेंबर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगती हूँ कि मैं आगे की अपनी बातें रखूँ। आज का मेरा टॉपिक है लॉयल्टी और मेरा नाम चेतना राठौर है और मेरे साथी
बाबू
और हम लोग पीस मास्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लॉयल्टी का अर्थ समझाने से पहले मुझे एक कविता याद आ रही है। ये कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। वो कहते हैं कि हिमालय की चोटी पर पहुंच एवरेस्ट विजय की पताका फहरा कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी से विश्वासघात करे तो क्या उसका अपराध इसलिए क्षम्य होगा? हो जाएगा, एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था इसलिए क्या वो क्षम्य हो जाएगा? अपराध तो अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवलता उस कलीनता को ढक नहीं सकेगी। कपड़ों की दुदिया सफेदी जैसे मन की मलिनता को नहीं छिपा सकती। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अपने मन को कभी छोटा न करे इसके लिए, किसी का मन न तोड़ने के लिए रिश्तों में निष्ठा की, लॉयल्टी की जरूरत होती है। क्योंकि जब रिश्तों में रिश्ते मजबूत होते हैं तो मेंटल और इमोशनल वेलबींग आता है और उसी से सोशल वेलबींग भी होता है। तो समझते हैं लॉयल्टी, लॉयल्टी क्या होता है। लॉयल्टी इज एन एक्ट ऑफ कमिटमेंट, ट्रस्ट एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स आर कनेक्शन। जब ऑनेस्टी हमारे कनेक्शंस में आती है तो वही लॉयल्टी होती है। अब लॉयल्टी और ऑनेस्टी में डिफरेंस समझते हैं। लॉयल्टी जो है वो ऑनेस्टी का सबसेट है। ऑनेस्टी जब शब्दों में आती है तो उसका अर्थ होता है सत्यता। ऑनेस्टी जब कर्मों में आती है तो उसे ईमानदारी कहते हैं। लेकिन जब यही ऑनेस्टी संबंधों में आती है तो उसे वफादारी अर्थात निष्ठा अर्थात लॉयल्टी कहते हैं। लॉयल्टी लाइफ के कई डोमेन्स में काफी नेसेसरी होती है, जैसे कि
सेल्फ लॉयल्टी। खुद के कैरेक्टर बिल्डिंग में सेल्फ लॉयल्टी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। सेल्फ लॉयल्टी मतलब क्या है, हमें जीवन में बहुत सारे सोचते हैं, हमें ये करना है, हम बहुत सारे कमिटमेंट देते हैं, उस कमिटमेंट पर हम पूरे डेडिकेशन से वर्क करना चाहिए, उस कमिटमेंट पर टिका रहना चाहिए, उसे हम सेल्फ लॉयल्टी कहते हैं। स्पिरिचुअल में हमने अभी स्व का अर्थ समझा, आत्मा के 7 इनिट क्वालिटीज के साथ कनेक्टेड रहने, कमिटेड रहने, उसे सेल्फ लॉयल्टी कहते हैं।
माता पिता भाई बहन फ्रेंड्स आदि संबंधों में हार्मनी की काफी जरूरत होती है और हार्मनी की वजह से ही ये रिश्ते मजबूत होते हैं और हार्मनी लाती है लॉयल्टी।
वर्क प्लेस में भी लॉयल्टी रहती है। वर्क प्लेस में लॉयल्टी मतलब हम जिधर भी किसी तरह कौन सी भी चीजें वर्क कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उधर हम पूरी तरह से लॉयल रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम जो भी ऑफिस की चीजें हैं हमें पर्सनल यूज नहीं करना चाहिए। उसी वजह से मतलब जब हम लॉयल मेंटेन करेंगे हमारे प्रति ऑर्गेनाइजेशन में सम्मान बढ़ेगा।
प्रकृति के साथ मनुष्य आत्मा का बहुत पुराना रिश्ता है। प्रकृति हमेशा हमें देती ही देती आई है, लेकिन हमने उसे रिटर्न में क्या दिया, क्या दिया उसे रिटर्न में। तो हमें प्रकृति के साथ भी लॉयल रहना है। प्रकृति के साथ लॉयल रहना अर्थात अपने अच्छे कर्मों से और सत्य निष्ठा से प्रकृति का साथ देना और समर्थन करना।
नेशन के प्रति भी बहुत लॉयल रहना चाहिए। हम जब से फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर बर्थ देश ने बहुत सारे दिए हैं हमारे लिए, इसलिए हम नेशन के प्रति लॉयल होना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूंगा, तो चलो आज से हम लॉयल को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाइए। थैंक यू। ओम शांति।
जीतू भाई, अब हम अपने गेस्ट को अपनी सभा के साथ इंट्रोड्यूस कराएं।
जी जी। ऑनरेबल अध्यक्ष जी, जो आज्ञा हुई है, हमारे बीच में ऑनरेबल गेस्ट है डॉक्टर अश्लेषा, जो साइकोलॉजिस्ट है। आप सबसे बात करना चाहते हैं, आप सभी भी सुनना चाहते हैं ना? यस। हमारी सिस्टर अश्लेषा बहुत ही गौरवशाली बायोडाटा डिजर्व करते हैं। जो संक्षिप्त में बता दो, बहुत बड़ा बायोडाटा है लेकिन संक्षिप्त में आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सिस्टर अश्लेषा फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मित्रवाक। मित्रवाक ऑफर्स ट्रेनिंग, काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन बिहेवियरल स्किल्स एंड ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू चूज द मोस्ट appropriate career path through psychological assistance. She is a professional certified trainer and a certified NLP practitioner. She did her MPhil research on Digital India and her doctorate studies on women empowerment at Acharya Nagarjuna University. She was awarded with the title Vidya Ratna by Godavari Photography Association. She is also an honorary member of Rotary International. She is a regular life skill coach and has got the privilege to work with several organizations like Rajahmundry Central Prison, AP Skill Development Corporation and many organizations. She is on a mission to help more than 1 lakh students to transform themselves into better individuals and build a better society. So I am inviting Sister Ashlesha to address the house.
Om Shanti. Thank you, Jitendra Bhai. Respected Chair and keynote speaker and all the delegates, participants of this Spiritual Youth Parliament, I am Dr. Ashlesha and I am from Andhra Pradesh. Maybe I am the first one to speak in English here from past couple of days. Are you comfortable with English? All of you? Simple English, not typical English. Being psychologist, my regular duty is to address challenges and solutions. Till now we saw all the challenges, and after me you will be witnessing the solutions from different team. I first received an invitation from Chandrika Ben stating that, respected spiritual sister, the country is full of youth who are rising stars, and there is enormous potential in the youth, and it is our prime responsibility to build them strong to make this place a better world. The whole world believes that today's youth, they got the fullest potential which no other human being on the earth possesses. But unfortunately, somehow in the 21st century, we see so many diversions and distractions which are actually dominating the victories of youth. Under this topic,
building youth for better world, I thought three things would help youth to help world to get a better place. The three aspects are, one is individual self-responsibility, ISR. Second is individual social responsibility, ISR. And third is individual, anybody? Very good. Spiritual responsibility, ISR. ISR. If we can build three, self, social and spiritual responsibilities, world will be a better place. How self? How can we build self-responsibility? From yesterday we have been listening to many of our friends and participants speaking about self-regulation, self-management, self-introspection. First and foremost thing, for anybody, say, not just youth, for anybody, to get on to the highest level of living is to have self-awareness. If today's youth can work on what are the strengths and what are my weaknesses, that's the best ever answer to make the youth 100% potential. But unfortunately, the inward looking is lacking. Today if we ask youth, tell me one thing, what are you good at? There is a confusion, because in the olden days there were no choices. There were no choices. 10th, no choice. Intermediate, only one or two choices. After intermediate, only 3-4 choices, finish. But now, this 21st century has got so many choices. In fact, confused with so many choices. We don't know to what path we need to enter. And that's the root cause of all the problems, which even our sister has spoken, depression, all psychotic behaviors, because there is no clarity on life. If we first know what we are good at, if we first know what we are passionate about, we are not alone. We have a purpose then. How many of you will frankly agree, after coming here, you got to know more about yourself because you are working in teams? Please raise your hands. Self-awareness only begins when you step out of your comfort zone and start working and achieving few things which are very important for your future. In order to have self-awareness, first step is, you need to root your present situation firmly. Without having strong grip on present situations, we cannot actually think on where to become, what to become and where to go. You have family disturbances, you have low grades in the education, your all-round development is low and you cannot plan for the future. To my friends who are in this age group between 18 to 35, if you want to have strong self-awareness, first thing is you need to step out of your comfort zone. Second thing is you need to establish peace with your current situations. What are your present living? Family, education, some social life. If you don't have peace with these three aspects, you cannot really work for better things. If you know the famous scientist Abraham Maslow, social scientist, he also speaks about this. When you want to achieve the greater states of spirituality, first you need to make peace with your basic needs, security, belongingness and all. Then only we can aim for higher aspects of life. And the second thing is individual social responsibility. How many of you really acknowledged your teammates for what they have made till date? Acknowledgement. How many of we really acknowledging our fellow being,
every day on a regular basis. Are we acknowledging our parents for what they gave us? Are we acknowledging our teachers for what they are giving us? Are we acknowledging the Guru for what he is guiding us? In order to lead a very good social responsible life, as we are social animals and social living animals, first thing we need to have that acknowledgement. And when we acknowledge the other person for the love they show towards us, for the peace they give us, for the cooperation they are giving us, definitely you will be feeling much powerful than everybody. That individual social responsibility will make you stronger in the society. And only if you have both self-responsibility and social responsibility together in a balanced level, then only you can really enter into spirituality. Or else we cannot. I would like to mention a small story. There is a market where they sell livestock. You know, right? Cows, buffaloes, yeah, goats, camels. And there is one merchant who wants to buy a special camel for his livestock store. So he went to the market and negotiated a very, very fine, healthy camel. And the merchant was very happy coming home carrying that beautiful, elegant, healthy camel. As soon as he came home, he asked his servant to clean the camel as he got it from the market. The servant started removing the saddle, you know, the leather pouch of the camel. And once he started cleaning the camel, he found a velvet pouch of diamonds. Imagine servant's face. Master, you didn't just bring the camel, you also bought precious diamonds for free. And then immediately merchant started walking back to the market. Master, stop, where are you going? No, I just bought the camel and anything that is beyond the camel is not mine. I just want to return them. He started going back to the market and he went to the seller. And seller didn't even realize that there is something valuable in that camel's pouch. And then the seller was so much tense. Maybe he came back to the return to the camel after going home, it may be sick. And then this merchant went to the seller and said, Sir, you forgot this valuable diamonds in this camel's leather pouch. Seller immediately thanked him and said, Yes, I stored in the camel's pouch just because camels will allow only the riders to touch it, not anybody else. Then the seller has offered some diamonds to the merchant. Merchant said, No. What I want, I already took from you by paying the worth to it. I don't want anything extra. But the seller insisted to take. As he's insisting too much, the merchant told him, I have already taken two precious diamonds from the pouch. The seller immediately counted all the diamonds. The count was right. There were no missing diamonds. Seller asked, You said you took two precious diamonds. Everything is there here. Yes, I took two precious diamonds. One is my integrity and one is my self-respect while I returned back to this place. My dear friends, living a spiritual life is choosing to do the right thing even there is a chance to do the wrong thing. Only if you are self-aware of what you are, only if you can gain that social knowledge and responsibility, you can gain that consciousness of living and leading the spiritual life. Thank you.
Thank you, sister, for your valuable advice and valuable words. हम अध्यक्ष महोदय फिर से हम सत्र की कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं। हम सत्र में आगे बढ़ते हैं। अभी तक 5 ग्रुप का प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें हमने वैल्यूज की डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा जाना। अभी 5 ग्रुप है, सीक्वेंस में बता देता हूं। ब्लूमिंग माइंड्स, सनराइज थिंकर्स, स्पार्कलिंग स्टार्स, सोल सीकर्स एंड रे ऑफ होप। तो सबसे पहला ग्रुप ब्लूमिंग माइंड्स, ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओम शांति। मैं आकाश माइती अपने ग्रुप ब्लूमिंग माइंड्स का नेतृत्व करते हुए अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूंगा कि आप सबके समक्ष एक एक्ट प्रस्तुत करूं। इस एक्ट के माध्यम से मैं आप सभी को सहयोग यानी कॉपरेशन में आने वाले चुनौतियों और उनके समाधानों का एक्सप्लेनेशन दूंगा।
मिस्टर आकाश, तो मेरे पास 5,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, मुझे उस पर घर बनाना है 3 स्टोरीज का विद टेरेस। आप बजट की टेंशन मत लीजिए। आपको क्या लगता है आपको कितना टाइम लगेगा?
देखिए, मेरे पास तो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, मुझे उनका सहयोग कॉपरेशन की मदद से 3 स्टोरी बनाने में 8 से 9 महीने लगेंगे।
ठीक है, मैं आपको 8 महीने देता हूँ, आप 8 महीने में मुझे प्लीज मेरा काम करके दीजिए। थैंक यू।
आप निश्चिंत रहिए, आपको आपके निर्धारित समय पे ही आपका घर मिलेगा।
जी, मैं आपकी जुबान को आपकी अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू।
इसी मौके का तो इंतजार था, अब इस मौके को मुझे छोड़ना नहीं है। मेरे पास तो पहले से ही लोग थे, उनके सहयोग से अब ऐसा घर बनाऊंगा कि क्लाइंट तो छोड़िए, दुनिया भी देख के बोलेगी क्या घर बनाया है। हेलो, अरे एक अच्छा कांटेक्ट मिला है, आप सभी आ जाओ, आप सबकी जरूरत मिलेगी, एक घर बनाना है आलिशान।
मिस्टर आकाश, 5 महीने हो गए हैं, आपने अभी तक कितना हुआ है मेरे घर का काम?
सही समय पे पूरा होगा। मेरे पास जो लोग हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या बताऊं, उनके सहयोग से आपका घर आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा बनेगा।
चलिए ठीक है, थैंक यू।
हे राम, इधर ये क्या हो रहा है? मैंने कहां सोचा था इनको 8 महीने की जगह 6 महीने में घर दूंगा, लेकिन यहां तो घर पहले ही यहां पे लड़ाई कर रहे हैं। आपने जैसा कि देखा, बिना एक दूसरे के सहयोग के आपका निर्धारित काम किसी भी समय पर पूरा नहीं हो सकता। हमें अलग अलग फील्ड के जो महारथी हैं, जैसे मेरे पास ये हैं, इनके सहयोग की जरूरत है। अगर ये साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो मेरा घर कभी नहीं बनने वाला है। अभी देखते हैं कि इनके साथ चुनौतियां क्या क्या आ रही है। टाइल्स वाले भैया, आपको दूसरों को भी जरा समय दो, उनको भी जगह दो काम करने के लिए। हाँ, आपको पता है आप बहुत अच्छे हो, आपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन उनको भी समझिए, ठीक है, ईगो को थोड़ा साइड रखिए। आप सब मिलके अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम समय पे पूरा कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने देखा, अगर हम सब साथ मिलके काम करें तो हम अपना घर, जैसे हम यहाँ पे घर बना रहे हैं, निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आसपास लोगों से ईगो से बात करें या फिर उनकी बातों को ना समझे, तो हमें ना तो उनका सहयोग मिलेगा और ना ही हमारा काम पूरा होगा। धन्यवाद। सर्व के सहयोग से स्वर्णिम समाज।
थैंक यू वेरी मच। सनराइज थिंकर्स, उसके बाद में स्पार्कलिंग स्टार्स। सनराइज थिंकर्स,
सर एक माइक चाहिए होगा, छोटा माइक चाहिए होगा, एक छोटा माइक चाहिए होगा।
सनराइज थिंकर्स टाइम स्टार्ट नाउ।
नमस्कार, मैं यश अपने साथी
सैद सिंह
और अनुष्का, हम अपनी पार्टी सनराइज थिंकर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ऑनेस्टी के चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। शुरू करने से पहले मैं ऑनरेबल स्पीकर से परमिशन लेना चाहूंगा।
इस टॉपिक से मुझे याद आया कि मेरे पिताजी मुझे बचपन में एक बात कहा करते थे कि सत्यता की नाव हिलेगी, डुलेगी, डगमगाएगी भें, मगर डूबेगी नहीं।
जैसे हम सब जानते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन इसे फॉलो करने में हमें बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। अब चाहे दफ्तर का ही एग्जांपल देख लीजिए, कितने एम्प्लॉयर्स हैं जो अपने एम्प्लॉयज को सच बोलने पर छुट्टी दे देते हैं। अगर वो सच बोलता है तो उसे छुट्टी नहीं मिलती है। ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पासपोर्ट तक हमें ईमानदारी से अगर हम बोलते हैं तो कोई भी हमारा काम जल्दी नहीं करके देता है। तो सरल हमारा काम हो जाए इसलिए हमें ईमानदारी छोड़कर झूठ बोलना ही पड़ता है।
हाँ मित्र, आपकी बात बिल्कुल सही है। नो डाउट चैलेंजेस आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, मगर तब तक जब तक आप सत्यता को समझो ना, अर्थात सत्यता की ताकत को ना पहचानो। इस चीज से मुझे गांधी जी की एक बचपन की कहानी याद आती है। जब वो अपने माता पिता से झूठ बोल के नाटक देखने जाया करते थे तो एक दिन उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा। उस दिन के बाद से उन्हें सत्य बोलने की प्रेरणा मिली। उस दिन से उन्होंने अपने माता पिता से हर चीज सच बोलनी स्टार्ट कर दी और उस दिन के बाद से हम देख ही रहे हैं कि गांधी जी ने सत्य के राह पर चल के इस देश को भी आजाद कराया था।
बिल्कुल, पर आप आज के रिलेशनशिप से देख लो, अगर सच बोल देते हैं तो लोग हर्ट हो जाते हैं, लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं, कितने ट्रस्ट इश्यूज बढ़ जाते हैं, लोग आपस में एक दूसरे को कितना झूठ बोलते हैं, मम्मी पापा अपने बच्चों को, बच्चे अपने पेरेंट्स को, दोस्त दोस्त से झूठ बोलता है और हर कोई पति पत्नी भी आपस में झूठ बोलते हैं। जब सच बोलने से अगर रिश्ते टूट ही जाएं तो क्या फायदा है ऐसे सच का?
अगर झूठ बोल के आप अपना कोई रिश्ता बचा भी लोगे तो क्या फायदा है ऐसे रिश्ते का? कोई वजूद ही नहीं है ऐसे रिश्ते का। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, ये जीवन का परम सत्य है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिलेशनशिप में अगर एक पार्टनर से कोई गलती हो भी गई तो वो उसे छुपाने की बजाय अगर ऑनेस्ट होके अपने पार्टनर के पास जाके उसे सारी चीजें सच बोलेगा तो मानता हूं शॉर्ट टर्म में उनको उनके रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट आएगी, पर लॉन्ग टर्म में उसके पार्टनर को भी दिखेगा कि मेरा पार्टनर मेरे साथ कितना ऑनेस्ट है। लॉन्ग टर्म में उनका रिलेशनशिप हेल्दी होगा, उनके ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल नहीं आएंगे और यही चीज हमारी पूरी लाइफ में, प्रोफेशनल, फैमिली, हर चीज में यही चीज अप्लाई होती है।
जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तो हमारी यंगेस्ट मेंबर ने भी कुछ अपने विचार प्रकट किए जो हम चाहेंगे कि वो अपने स्वयं बताएं।
आज मैं आपके साथ अपने कुछ विचार को शेयर करना चाहती हूँ। पहला विचार, अगर हम लोग कोई गलती करते हैं और अपने माता पिता से सत्य बोलते हैं तो हमें डांट कम पड़ती है या फिर हमें डांट नहीं पड़ती है।
आखिर में मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और इसी चीज को अगर हम अपने जिंदगी में लागू कर लें, अगर हम कुछ ही समय के लिए सत्य को धारण कर लें अपनी जिंदगी में तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्पार्कलिंग स्टार्स, उसके बाद में सोल सीकर्स तैयार रहेंगे। स्पार्कलिंग स्टार्स जल्दी से आ जाइए।
ओम शांति। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूँगा कि हम हमारा पेशकश रखें। हमारी टीम का नाम है स्पार्कलिंग स्टार और आज हमें जो विषय मिला है वो ये मिला है कि प्योरिटी के सॉल्यूशंस और चैलेंजेस को लेकर हमने यहाँ पे क्या सीखा है। खासकर कि अभी हम एक बहुत सुंदर स्किट करने जा रहे हैं जिसमें 4 मिनट में हम 4 सीन दिखाएंगे। तो यहाँ स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट से कुछ स्टूडेंट्स अपने शहर में गए हैं और वो कॉलेज में इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं।
भैया उधर देख, उधर
कहाँ कहाँ
कहाँ लड़की क्या पटाखा दिख रही है?
क्या बात कर रहे हैं यार,
क्या हुआ?
हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हमको सब पवित्र सिखाया जाता है, हमको खुद पवित्र दृष्टि देखनी है और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि भाई। तो इसलिए कोई किसी को भी देखे तो वो तेरी बहन की नजर से देख उसको, और कल को कोई तेरी बहन को भी देखेगा कल वो देखता है तो उसको कैसा लगेगा। इसलिए किसी को भी देखना है समझ वो भी तेरी बहन है।
ठीक है भाई, यहाँ तो झुकना पड़ेगा।
झुक जाओ
माइक।
हाय कृतिका, ऑल गुड?
या अरे तुमने कैसे कपड़े पहन के रखे, एकदम बोरिंग लग रही हो। आओ चलो तुम्हें पार्लर लेके चलती हूँ, थोड़ा मेकअप शेकअप करते हैं।
वेट, मुझे पार्लर जाके मेकअप में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी स्पिरिचुअल पार्लियामेंट में हम सभी ने ये बात डिस्कस की और समझी कि हमें अंदर से अपने विचारों को पवित्र बनाना है, यानी प्योर बनाना है, जिससे कि हमारा व्यक्तित्व सुंदर होगा। इसीलिए सिर्फ आउटर अपीयरेंस पे फोकस न करते हुए हमें ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। हम कपड़े भले ही अच्छे और स्टाइलिश पहने पर डिसेंट।
हाँ ठीक है, अब मुझे लग रहा है मुझे अपना मेकओवर करना पड़ेगा। थैंक यू
भैया। बॉडी बहुत बढ़िया है तेरी, मुझे भी बड़ा कितना चिकन खाता है तू।
थैंक यू भाई, पहले तो बॉडी अच्छी के लिए, लेकिन चिकन खा के बॉडी नहीं बनाई है मैंने।
अरे भाई चिकन जैसा प्योर प्रोटीन और किस में है फिर?
भगवान की याद में जो खाना बनाया जाता है सबसे पवित्र और प्योर प्रोटीन उसी में ही है।
ओके भाई, अब तो नॉनवेज बंद करना पड़ेगा।
और वैसे भी चिकन खा के अपना पेट कब्रिस्तान बनाना है क्या?
ये भी सही है।
अच्छा अरे बाप रे, चलो ठीक है। अरे अंकिता तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया।
वेट, नहीं मुझे पता भी नहीं करना। क्या करेंगे हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करके? गॉसिपिंग इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। इससे तो अच्छा हम दोनों आपस में बैठ के हेल्दी डिस्कशन करते हैं या बात करके कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। और अ बेटर वन टू यूटिलाइज आवर टाइम, चलो मेडिटेशन करते हैं।
यस यू आर राइट, लेट्स
चलो।
तो हम सभी ने देखा कि मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता से ही पवित्र जीवन हम जी सकेंगे, और इसलिए तो स्पार्कलिंग स्टार कहती है
पवित्रता से कुछ होगा ऐसा, नो मैटर व्हाट वी विल स्पार्कल। एक बार आप मेरे साथ बोलिए कि पवित्रता से कुछ होगा ऐसा,
नो मैटर व्हाट वी विल स्पार्कल।
वी विल स्पार्कल। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। एंड देन रे ऑफ होप तैयार रहेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आवाज नहीं आई, एक बार और पूरे जोर से, ओम शांति,
ओम शांति।
जी माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मंचस्थ महानुभव, जूरी मेंबर्स एवं मेरे युवा दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम भूमिका है
और मैं यश,
और हम दोनों हमारे ग्रुप सोल सीकर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा आज का वार्तालाप का विषय शांति है, और इस विषय पर विचार रखने के लिए हम अध्यक्ष जी की अनुमति लेना चाहेंगे। धन्यवाद। एक प्रश्न है, शांति किसे अच्छी नहीं लगती? आई गेस सबको अच्छी लगती है ना? और शांति से आप समझते क्या है? शांति से आप समझते क्या है? पीस जी। तो शांति माना पीस, एकांत, सुकून, कॉन्सेंट्रेशन इत्यादि। लेकिन आज के संसार में जहां एक तरफ लड़ाई झगड़ा है, वहां शांति रखने वाले को मूर्ख और जोर से चिल्लाना, इज्जत ना करना, उसे समझदारी माना जाता है। शांति जो समझदारी की निशानी है, क्या वो सच में मूर्खता है? आइए देखते हैं।
ये कहानी है दो व्यक्तियों की। एक व्यक्ति जो कार में बस बैठा था, दूसरा व्यक्ति जो कार चला रहा था, पर चलते चलते सामने वाली की कार ठोक दी। हमारे जिंदगी में ऐसी चीजें होती रहती है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पर व्हाट वी कैन कंट्रोल इज द रिएक्शन वी कैन गिव टू इट, अ पॉजिटिव रिएक्शन और अ नेगेटिव रिएक्शन। तो इस सीन में हमारे भाइयों ने किया क्या, जैसे शॉक लगा, पहले व्यक्ति बाहर आए, देखा उनको चोट लगी थी, कार पे डेंट पड़ा था, गुस्से में वो चले गए दूसरे व्यक्ति के पास। अब लगा कि मारपीट होगी। अब दूसरे व्यक्ति शांत मन से, दिल से माफी मांगी और देखा कि उनको कोई चोट ज्यादा लगी नहीं, एंड इफ इज ऑल राइट। सामने वाले का शांत मन देख के खुद पहला व्यक्ति शांत हो गया, गुस्सा उसका चला गया और दोनों ने शांति से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया। अब आप मुझे बताएं, अगर इस सिचुएशन में अगर कुछ गलत हो जाता, अगर गुस्सा दिखा दिया था तो क्या होता? गलत चीजें बोल दिए होते, झगड़ा हो जाता था, क्रिमिनल केस भी हो जाता था, कुछ ज्यादा मारपीट हो जाती थी, पूरा समस्या बढ़ जाता था। तो इसी चीज के लिए शांति से इन लोगों ने सोल्यूशन निकाला प्रॉब्लम का और दोनों दोस्त भी बन गए। शांत मन से हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है।
दुनिया में अक्सर कहा जाता है, धीरज धर रे मनवा, तेरी मंजिल दूर नहीं। आप में से कोई बताएगा कौन सी मंजिल? कोई भी, कौन सी मंजिल? शांति दूत बनने की। कई बार जो काम जोश में, गुस्से में करते हैं, वही काम शांति से, शांति स्वरूप बनकर भी किया जा सकता है, और जो काम शांति से, सोच समझकर किया जाता है, वो सदैव हितकारी होता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि शांति आपके जीवन में क्या प्रभाव डालती है, तो लगभग सारे मुझे कुछ ना कुछ बता सकते हैं। पर ये जरूरी नहीं है जो कुछ आपने उससे सीखा वो आप में से हर कोई अपनी जीवन में अप्लाई करता होगा। मैं अगर शांति की शक्ति के बारे में बताने लगूं तो शायद शाम कम पड़ जाए। शांति माना मधुरता, विनम्रता, प्रेम, उच्च विचार, प्रसन्नता, क्षमा, सहनशीलता, सहयोग इत्यादि। शांति से जुड़ा एक वाक्य याद आता है। पिछले साल जब कश्मीर की पोच घाटी में इंडो चाइना वॉर चल रहा था, भले ही 4-5 बार ही सही, युद्ध का सॉल्यूशन भी शांति से ही निकला। आप सब समझदार हैं, खुद सोचिए, जब दो देशों की तनाव को शांति मिटा सकती है तो शांति में कितनी शक्ति होगी, इसका हमें अंदाजा तक नहीं है। ज्यादा नहीं, हम अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरों को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनको जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हम अपने वार्तालाप को कुछ पंक्तियों के द्वारा विराम चिन्ह देना चाहेंगे।
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांत तन हो मन हो शीतल, शांत तन हो मन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से
ओम शांति। धन्यवाद।
थैंक यू।
ओम शांति। माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य, ज्यूरी और मेरे सभी भाई बहनों, मैं गौरव,
मैं उर्मिला,
मैं रे ऑफ होप भारत की ओर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपने विचारों को प्रकट करने की अनुमति चाहता हूं। आज हमारा जो विषय है, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन इन लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स ऑनेस्टी विद सेल्फ, विद फैमिली, विद सोसाइटी, विद नेशन एंड विद ऑल। बट हम जो चैलेंजेस फेस करते हैं वो यही है कि हम क्या ये सब लॉयल्टी इजीली हम अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसके रीजन है सेल्फिशनेस। आज हम में सिर्फ मैं ही मैं, हर जगह मैं ही है, मुझे सबसे पहले चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा चाहिए, मुझे उसका भी चाहिए और मुझे इसका भी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है इन्फ्लुएंस, मीन्स हम बहुत जल्दी गलत संगतों में इतना जल्दी एंटर होते हैं, शायद हमें लगता है कि वही हमारे सहभागी हैं और वही हमारे सच्चे मित्र हैं। और तीसरा पॉइंट है डाउट ड्यू टू नेगेटिव इन्फ्लुएंस एनवायरमेंट, सॉरी मीन्स हम जल्दी ही दूसरों पे भरोसा खो देते हैं, जो आज की लॉयलिटी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने है। और दूसरा है कमर्शियलाइजेशन, हमारी मेन संस्थाएं स्कूल है, हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटल है, यहां पे क्या हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन हो गया है। जो ज्ञान बच्चों को सबसे पहले स्कूल में मिलना चाहिए था, मॉरल सोसाइटीज हैं, लॉयलिटी है, उन्हीं सभी का कमर्शियलाइजेशन हो गया है। हॉस्पिटल जहां डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, वो अपने मरीजों के साथ उनको इस तरह से खिलवाड़ करते हैं जैसे वो एक पैसा कमाने का जरिया है। और मैं छठा पॉइंट रखना चाहूंगा, सॉरी, मनी फैक्टर, हर जगह हमने मनी को तवज्जो देनी स्टार्ट कर दी है, हर चीज में, फैमिली हो, बिजनेस हो, कहीं भी देखे तो हमने मनी फैक्टर को ज्यादा तवज्जो देनी स्टार्ट कर दी है। उसके लिए हम शॉर्टकट्स लेते हैं, शॉर्टकट्स में क्या होता है, दूसरों के सिर के ऊपर पैर रख के भी जाना हो तो वो भी हम करते हैं, हमारे लिए वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि हम उसको पहले क्रॉस करें कि हमें पहले चाहिए। और इनसिक्योरिटी एंड इन अजम्पशंस, हम पहले ही लोगों के बारे में अपने विचार बना लेते हैं कि ये मेरे बारे में गलत विचार रखती है, ये मेरे लिए गलत हो सकती है। और है इन्फीरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी, खुद को सबसे या तो हमेशा नीचा समझते हैं या फिर सबसे ऊपर समझते हैं, जो हमारे लॉयलिटी के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव और चैलेंजेस पॉइंट आ रहे हैं।
ओम शांति। जैसे कि भाई जी ने बताया कि चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं लॉयल्टी को फेस करने में, वैसे ही हम लोग उसका सॉल्यूशन जानेंगे। अब सॉल्यूशन के लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे एक वृक्ष होता है, काफी विशाल वृक्ष है, उसका हमें आउटर पार्ट दिखता है कि वो कितना विशाल है, लेकिन जो उसका आधार है, जो उसका बीज है, वो हमें दिखाई नहीं देता, पर है तो वो भी चीज। वैसे ही हमारी लाइफ में काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, काफी बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, पर वो हमें काफी बड़े दिखाई देते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि उसका जो आधार है वो है आत्मा, जिसके अंदर काफी वैल्यूज है, पर हम उसे देख नहीं पाते हैं। अब हमें अपनी इनर पावर को, हमें अपने इनर पावर को जागृत करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, हमारे अंदर वैल्यूज डेवलप करने की जरूरत है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में ये चीज कंपल्सरी कर देनी चाहिए कि उसमें स्पिरिचुअल टॉक्स हो, मॉरल वैल्यूज पढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज की कमी ना आए और हम लॉयल्टी को खोए ना। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी से परमिशन लेना चाहूंगी एक प्रतिज्ञा करवाने की। थैंक यू। मैं आप सबसे खड़े होने का अनुरोध करती हूँ और अपना हाथ आगे करिए। आज हम भगवान के घर पे आए हैं, तो हम जो भी प्रतिज्ञा करेंगे उसको हमें फॉलो करना है। तो आप सब अपने मन में दोहराना जो मैं बोलूंगी। चाहे हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे कितने भी बड़े बड़े चैलेंजेस क्यों ना आए, पर हम लोग हमारी वैल्यूज को, हमारी लॉयल्टी को कभी नहीं खोएंगे। धन्यवाद।
थैंक यू। सभी को बहुत बहुत थैंक्स है, धन्यवाद है। बहुत अच्छी तरह से आप सबने अपने विचार रखे, दूसरों को विचार भी दिए और इतना बेहतरीन काम सबने किया है। आप सबको पता है, आप सबने एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट बचा के हमारे लिए कितने मिनट्स बचा लिए। तो सभी के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छी तरह से 4 मिनट में सुंदर मैसेज दिए।
अब हम सोचते हैं कि 0 पीरियड को स्टार्ट किया जाए।
जी, हमारे अध्यक्ष महोदया के आदेश अनुसार 0 आवर को हम स्टार्ट करते हैं। आप सबके मन में अगर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी विचार हो, तो आप शेयर कर सकते हमारे ऑनर गेस्ट हमारे साथ में है, हमारे ऑनर कीनोट स्पीकर हमारे साथ में है, आप सबके सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। तो प्लीज माइक पे आइए और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाथ रेज करेंगे अगर किसी को कुछ पूछना है तो।
ओम शांति आप सभी अध्यक्षों को। मेरा सवाल ये था कि जैसे कि ये पार्लियामेंट यूथ के लिए रखी गई है, सो एक इंसान के अंदर एक इच्छा शक्ति होती है हर एक के अंदर, जैसे कि उसे कुछ अचीव करना हो तो एक इच्छा शक्ति से करता है, इस इच्छा शक्ति को बरकरार कैसे किया जाए?
अच्छा सवाल है, अच्छा प्रश्न है। जो इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होती है वो किसी न किसी आपके अंदरूनी संस्कार की वजह से होती है। जैसे मान लीजिए आपको आम खाने की इच्छा हुई, बिल्कुल स्थूल बात करती हूँ, आम खाने की इच्छा होती तब है जब कभी आपने आम का टेस्ट किया था। अगर आप कोई ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ कभी आपने आम देखा ही नहीं, आम के बारे में सोचा भी नहीं, तो आपको आम की इच्छा भी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के उस संस्कार को ढूंढना होगा, सर्च करना होगा कि मुझे शांति की इच्छा हो रही है, मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा हो रही है, मुझे कोई लीडर बनने की इच्छा हो रही है, या कोई कंपटीशन में भाग लेना है या कोई भी। तो आपके अंदर जरूर वो कहीं ना कहीं संस्कार है, तो आपको अपने साथ बात करनी होगी और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करता है। जो मैंने भी अपने जीवन में देखा है, जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो हम कभी भी बोल नहीं पाते थे, अगर हमको दो मिनट के लिए, एक मिनट के लिए बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो हम कांपने लग जाते थे। लेकिन मेरे मन में विश बहुत थी कि मुझे एक अच्छा स्पीकर बनना है, तो वो विश इसलिए थी कि मेरी डेस्टिनी थी कि मैं बन सकती हूँ। तो ये परमात्मा के घर में आने से, सेवाओं में जुड़ने से मुझे बार बार वो काम मिला और मैंने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो मेरा डर भी खत्म हुआ और मैं वो चीज कर पाई। तो कहीं ना कहीं इच्छा बताती है कि वो आप करने योग्य है, इसलिए पॉजिटिव लीजिए, सिर्फ उस पर काम कीजिए, डर को छोड़ दीजिए। कोई भी काम तब तक ही नहीं होता है जब तक हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, परमात्मा को साथ रखिए, ये मैं कहना चाहूंगा।
अच्छा, जैसे कि हम एक सर्टन स्टेज पे पहुंच जाएं कि हमें जो चाहिए तो हमें मिल गया, लेकिन फिर हम उस पॉइंट पे अटके रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, सो इस इच्छा शक्ति को किस तरह से इतना डेवलप किया जाए कि हमेशा बरकरार रहे, अब हम हमेशा एक स्टेप फॉरवर्ड जाते रहे अपने करियर के अंदर, इसके लिए कुछ?
एक्चुअली कभी भी इंसान को रुकना तो चाहिए ही नहीं, परंतु हाँ ये भी नहीं है कि हम अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा सोचें या बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव माइंड में आ जाए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बाकी हमेशा अपने से जो आगे हैं, जो अपने से उस फील्ड के मास्टर है, उनकी गाइडलाइन लेनी चाहिए। जैसे मैं अच्छी स्पीच सुनती हूँ तो हम उसमें नोट करते हैं कि कैसे बोला जाता है, किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है अपनी चीज को। आपको अच्छा राइटर बनना है तो आपको अच्छे, आपसे भी जो अच्छे लोग हैं उनकी राइटिंग पढ़ना चाहिए, उनके वर्ड्स को पकड़ना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे राइटर बनेंगे। तो हमेशा आप कहीं भी रुके नहीं, लेकिन अपने से जो होशियार है, मास्टर है, उनके आप गाइडलाइन लीजिए और उनको देखें सुने। फिर भी अगर मैडम कुछ ऐड करना चाहती है तो जरूर करें।
So if I understand it properly, how you can achieve your higher aims? Yes. See, once we commit to ourselves, we take a resolution that I should be at least 1% better than yesterday, than what I am today, then definitely you will reach to excellence in no time. If you do 1% improvement a day, it is 37% improvement per year. Any skill you take, any skill, as like Didi said, writing, speaking, any skill, if you know that you are good at something, first try. If your heart and mind likes it, try increasing it by learning each day just 1%. You can do anything. Once we have that power of knowledge, we will not have fear. When we are fully efficient, fear cannot conquer us. We will be 100% fearless to do anything if we gain hold on it.
That's what I am asking, ma'am. If we get to the certain level, every person has an hungriness in them for their goals. Mm-hmm. But if they achieve that goal,
okay.
After that,
yeah.
Yes. What's the process after that?
If you understand it properly, there is no limit. Sky is the limit. And once we feel that there is no, you have achieved something, that means you can work on a bigger purpose. For example, your aim is to deliver a speech to 10,000 people. Now, your aim can be to influence 10,000 people. Now, your aim can be to inspire 1 lakh people. So, if you take, world is the limit. Yes. So, there is no such things like limited aims. Our vision should be in such a way that it should cover the whole world, where our skill set should be developed every day, keeping the whole world in mind. That's where we can make world better also.
Thank you so much. Thank you so much.
ओम शांति जी. दीदी, मेरा आप सभी से प्रश्न था, आप दोनों से. प्रश्न मेरा खत्म भी कर दिया था कि ठहरना तो चाहिए ही नहीं, पर मेरा प्रश्न भी यही था कि मैं अभी स्पिरिचुअल नहीं हूं, पर मैं वर्तमान में ठहरना चाहता हूं, तो इसमें अभी मुझे मनोविज्ञान की हेल्प मिल सकती है, साथ में मुझे स्पिरिचुअल हेल्प भी चाहिए कि मैं कैसे वर्तमान में ठहरूं. ये प्रश्न था मेरा.
आपको स्पिरिचुअल बनने के लिए कभी भी कुछ भी ऐसा छोड़ना नहीं है जो आज आपके पास है. आज जो कुछ भी आप एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को, आप अपनी टैलेंट को, आप अपने दोस्तों को, आपकी हॉबीज को, जो भी आप अभी प्राप्त करके खुश है, इनमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको. इसलिए ये मत सोचिए कि ये मैं सब छोड़ने के बाद स्पिरिचुअल बन सकता हूं. स्पिरिचुअल तब बनते हैं आप जब आपका दृष्टिकोण बदलता है. आज आपकी फैमिली के लिए आपका जो दृष्टिकोण है, एक साधारण हो सकता है कि मुझे उनको सुख देना है, मुझे उनसे सुख लेना है. लेकिन जब आप स्पिरिचुअल बनते हैं तो आपका दृष्टिकोण ये होगा कि मुझे अपने साथ साथ इनका भी कल्याण करना है, इनको हमें और बेटर लाइफ देनी है. तो बस आपका दृष्टिकोण बदलना ही आपका स्पिरिचुअल होना है. इसलिए आप ठहरे रह सकते हैं और आप कुछ भी छोड़े बिना अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल बना सकते हैं. लोग डरते हैं कि हमें शायद कहीं एंटर करना है स्पिरिचुअल फील्ड में, तो शायद हमें बहुत सारे जीवन में चेंजेस करने पड़ेंगे. और शायद इसलिए यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि ये सब बुजुर्ग होने के बाद हम करेंगे, रिटायर्ड होने के बाद करेंगे, अभी तो कैरियर बनाना, पढ़ना है, ये करना, वो करना. बिल्कुल बेशक आप ये सब कुछ करते रहें, पर उसमें आप अपने नजरिए को बदलें और थोड़ा सा वे ऑफ लिविंग आपकी बेटर होती जाएगी. छोड़ना कुछ नहीं है, पर बेटरमेंट लाना है. थैंक यू.
ओम शांति. माय क्वेश्चन इज ऑन कोऑपरेशन. सो प्रैक्टिकली कई बार चैलेंजेस आते हैं व्हाइल वर्किंग ऑन कोऑपरेट, स्पेशली और एनी अदर टीम एक्टिविटी. The whole team has to cooperate, like each and every member has to cooperate towards achieving the main objective. But कई बार ऐसा होता है कि हर कोई अपने बस selfish motive fulfill करने में लगे रहते हैं, तो उससे main काम भी नहीं होता है और बाकी सबके काम पे भी पानी फिर जाता है. तो now being aware of on like the importance of cooperation, how can we make others to cooperate as well in our team?
See, for cooperation, the main element is empathy. If you can imagine yourself in the shoes of the other person, you will never judge them first. There are no selfish people and there are no selfless people.
It's our perspective and judgment sometimes. First, we need to deal with them by getting down to their ground and their level of understanding about that, and then we should pitch them to our level. So to make that happen, we need to be empathetic at every person. Every person has their own uniqueness. First, we should go down to them, understand them, and then pull them to the similar motto. And working in teams, my dear friends, everybody should keep in mind the question of being. What am I being as a team leader? What am I being as a team member? What am I being as a leader? So if you can question these two oneself, we will get rid of this issue. And this is a major issue in corporates also. So to get a good cooperative state, you should be very empathetic so that they will understand you better if you start understanding them better. Yeah.
Thank you. ओम शांति दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चल रही है उसमें कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है. जैसे एक एग्जाम में होते हैं 6 से 7 अटेम्प्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बच्चा पेपर देता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे होता है, वही जब वो सेकेंड से थर्ड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर ना करने के बाद में सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट देता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है. जो पावरफुलनेस से वो फर्स्ट टाइम देता है वही पावरफुलनेस से वो सेकेंड थर्ड या फोर्थ टाइम नहीं दे पाता है, और करना उसको वही है. तो कॉन्फिडेंस लेवल स्टेबल कैसे रखा जाए सेकेंड से थर्ड टाइम में भी?
वैसे कल यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ था, शायद आपने ध्यान दिया होगा. ब्रदर रामकृष्णा भाई बता रहे थे ना कि फेल्यूअर का जो टाइम होता है वो जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि तब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तब आप साइलेंट हो जाते हैं, तब आप सीरियस हो जाते हैं, आप टाइम देते हैं ज़्यादा. तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि आपको सेकेंड टाइम में पावर नहीं होती है. हाँ, ये हमारी मेंटालिटी के हम थोड़ा सा शाई फील करते हैं. हमने जो होप रखी होती है उतनी रिजल्ट हमारी नहीं आई तो हमें लगता है कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं, पता नहीं अभी सेकेंड टाइम भी क्या होगा. ये अननेसेसरी जो हमारा फियर है उसको अवॉइड करके हमें एक्चुअली फेल्यूअर से सीखना है. फेल्यूअर कुछ भी नहीं है, एक सबक है, एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको मिला हुआ चांस है. तो हमारी बस माइंडसेट को ही चेंज करना है कि मैं अंतिम युद्ध तक लड़ूंगी. और आपको पता होगा कि दुनिया के बहुत जो सक्सेसफुल लोग हैं वो जिंदगी में बहुत बार फेल्यूअर का सामना कर चुके थे. जैसे अमेरिका के जो मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट थे, तो अब्राहम लिंकन, वो 27 टाइम्स इलेक्शन हारे थे, 27 टाइम्स. लेकिन जो फाइनल में जिस इलेक्शन को उन्होंने जीता, उस इलेक्शन के बाद वो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रेसिडेंट बने अमेरिका के. बहुत ही हार्ड लाइफ थी और इतने सारे फेल्यूअर के बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं भूला. तो हमें भी चाहे कितना भी अटेम्प्ट हो लेकिन अपने अंदरूनी लक्ष्य को जागृत रखना चाहिए. मैडम भी कुछ बताना.
सी व्हाट एवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू चूज, यू शुड नो व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन IAS, यू शुड नो व्हाई यू वॉन्ट टू बिकम एन IAS. इफ योर गोल इज क्लियर, not even in the last attempt you will lose the power. But only if we don't know why we are writing that exam, that power automatically comes down. Are we running the rat race? Yes. Or are we achieving it because we know the reason why we are opting for it? If you have the clear answer for why, you will never lose that power.
Om Shanti. Ma'am, how do we detach from people, people who we are involved with, people who we are very attached to, but they aren't with us or we aren't involved with them anymore?
Please repeat.
How do we detach from people who we are attached to at one point, but we aren't involved with them anymore?
The whole point of discussion is no attachment. Just kidding. See, my dear friend, if you get headache, who is the first person to know about the headache?
Me.
Are the doctor or your parents?
No.
You.
If you are sitting in a courtmanship and king is present, who will take the final decision?
Me, of course.
King. Yeah. The king will take, right? Who is the master of you?
Me.
It's your decision, right?
Yeah.
To get into attachment or detachment. So the answer lies there.
But sometimes you just can't let go of someone, right?
See,
even though you don't want them anymore in your life.
At this age, everything looks so fancy. Those are not attachments, those are attractions. When we pass on, after 10 years we'll realize, for this funny thing I have fought for 3 to 4 years. We'll just laugh at ourselves after 3 to 4 years. So, evolution of life, and you have to experience that attachment to get to that stage of detachment again. Or else in Indian culture we say grihasthiti. Grihasthiti is all about that. Experiencing all the attachments and then coming to the final end.
Thank you.
Om Shanti. My question is an extension to what brother asked. Humko kai baar kaha jata hai ki humko detach rehne ka abhyas karna chahiye. Humko antarmukhi rehne ka abhyas karna chahiye. Par in sab mein kai baar aisa hota hai ki हमको आगे वाली व्यक्ति के लिए अप्रिसिएशन भी एक्सप्रेस करना पड़ता है, कई बार उनकी स्थिति को ऊंचा करने के लिए. और उस स्थिति में ड्यूअलिटी होती है कि क्या हम अंतर्मुखता का अभ्यास करके उस मोमेंट पे सेल्फ सस्टेन्ड रहें, या फिर उस व्यक्ति की स्थिति को ऊंचा करने के लिए उस स्थिति अनुसार, परिस्थिति अनुसार उसको अप्रिशिएट करें, उसकी क्वालिटीज को एक्नॉलेज करें. तो प्रश्न ये है कि हाउ टू मेंटेन अ राइट बैलेंस बिटवीन दीज एस्पेक्ट्स, डिटैचमेंट, अंतर्मुखता, एंड हाउ टू अप्लाई दी नॉलेज एक्यूरेटली.
देखिए, जब डिटैच होने की जो बात कही जाती है वो इसलिए कि जो यहां बार बार चर्चा हुई कि व्यक्ति बड़ा नहीं है, व्यक्तित्व बड़ा है. तो किसी से भी जब हम इंस्पायर होते हैं या किसी की हम हेल्प कर रहे हैं तो पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए नहीं करते हैं, लेकिन एक अच्छा कॉज है, एक अच्छा उनका एम है, उसको हम पुश कर रहे हैं. तो व्यक्तिगत नहीं लेते हुए गुणों को हमें लेना है. तो तब हम क्या होंगे, हेल्प भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन हम किसी में अटैच नहीं हो जाएंगे. तो ये थोड़ा सा गैप समझना पड़ेगा कि हम व्यक्ति से प्रभावित हैं या उनके गुणों से. देखो, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो जरूरी नहीं कि उनका फिगर और आपको उसका कलर यही अच्छा लग रहा हो, लेकिन कुछ गुण होते हैं, क्वालिटीज होती है. टाइम पर वो आपका रिस्पेक्ट करता है, टाइम पर वो आपकी हेल्प करता है, इसलिए वो अच्छा लगता है. तो आप अगर अट्रैक्ट हुए हैं तो व्यक्ति पे नहीं, उस क्वालिटी पे. तो उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने में अगर आप किसी की मदद करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है. उसके लिए अगर आप उनके साथ खड़े हैं तो बुरी बात नहीं है. लेकिन वो गलत है, लेकिन फिर भी आप उनको पुश कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, ये अटैचमेंट है. अगर कोई गलत है तो वो चाहे मेरा भाई है, चाहे मेरा बेटा है, कोई भी है, मैं इतनी ताकत रखूं कि मैं उनको बता सकूं कि दिस पॉइंट पे आप इस पॉइंट पे गलत है. तो ये बैलेंस हो जाएगा. लव एंड लॉ, बाबा भी कहते हैं लव एंड लॉ. प्यार भी फूल कीजिए, लेकिन जहां वो गलत है वहां आप जरूर बताएं. हाँ, अच्छे शब्दों में बता सकते हैं तो आपके संबंध भी खराब नहीं होंगे, और जब आप मदद भी करेंगे तो भी आप अटैचमेंट से नहीं करेंगे, लेकिन न्यारे होके कर सकते हैं. क्लियर?
और कोई है? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ऑनरेबल गेस्ट, इन्होंने सभी के प्रश्नों के संतुष्टजनक आंसर भी दिए. मैं समझता हूं इस पार्लियामेंट में आके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अभी खत्म हो गए होंगे, अभी सॉल्यूशंस हमें सभी मिल गए. तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गेस्ट का. अभी सदन की ओर से हमारे आदरणीय अध्यक्षा महोदया से हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप सदन को संबोधित कीजिए।
ओम शांति। सब मिलकर कहिए ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज बहुत अच्छा दिन है। आप सबने बहुत अच्छे अच्छे विचार, जो हम सबकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, चैलेंजेस भी आप लोगों ने स्वयं ही पेश की और उसके सॉल्यूशंस भी आप सभी ने पेश किए। तो इससे ये तो सिद्ध है कि हमको पता है हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या है और उन प्रॉब्लम्स का वे आउट क्या है। तो जो जो हमने यहाँ पर मिलकर के सारे ग्रुप्स ने अलग अलग बातचीत की, चाहे दो जनों ने या तीन जनों ने सुनाया, लेकिन बात तो हम सब की मिलकर दो जनों ने यहाँ पर पेश की है। तो इन सब बातों को जो मैं सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, किंतु एक छोटा सा पैराग्राफ When I was studying in 8th class, वो मुझे याद आया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो एक पैराग्राफ था which was to be translated into English। तो क्या था वो पैराग्राफ, आप ध्यान से सुनिएगा। मोहन 8वीं क्लास का बच्चा है और वो पढ़ रहा है, उसका कल एग्जाम है। जब उसके पिताजी उसके कमरे में प्रवेश करते हैं तो उसके आंखों के पास उसकी किताब रखी हुई थी, और जब उसके पिताजी ने उन किताब को खोला और देखा क्या रखा हुआ है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था सवेरे उठने के लाभ, और उस वक्त सवेरे के 9 बज चुके थे। This paragraph was to be translated into English। यानी कि हम याद तो कर रहे थे, आज तो शायद 9 बजे कोई ज्यादा लेट या जल्दी क्या कहूं, तो याद क्या कर रहे थे, सवेरे उठने के लाभ, और सवेरे के 9 बज चुके थे। तो केवल मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि हम सब ने बहुत ऊंची ऊंची बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ क्वालिटीज सुनी भी और उसको यहां डायस पे आकर उसको समझाया भी और समझा भी, लेकिन अब अपने आप से पूछना है, उस बच्चे की तरह कहीं हम केवल एग्जाम में लिखने के लिए या डायस पे सुनाने के लिए तो नहीं थे। तो बहुत जरूरी है कि इन सब क्वालिटीज को, चाहे ऑनेस्टी, चाहे प्योरिटी, कोऑपरेशन, पीस, जिन भी वैल्यूज की हमने बात की है, आज उसको अपने जहन में उतारने के लिए इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो मैंने अनुभव किया और सीखा है, आई वॉन्ट टू शेयर दोज 2-3 थिंग्स विद ऑल ऑफ यू। पहली बात कि जो ऑनेस्टी है, प्योरिटी है, कोऑपरेशन, पीस जो भी है, इसको कौन अपनाएगा? वो कोर वैल्यू, वो कोर थिंग जो है, वो मुझे अपने जीवन में अंडरस्टैंड करनी है। जब इस संस्था में हम आते हैं तो हमें पहली बात सिखाई जाती है कि हम कौन हैं। जब इस रियलिटी को, जो जिंदगी में कई बार हमने महसूस किया, द बॉडी इज लाइंग देयर एंड वी आर सेइंग ही इज नो मोर, तो वो कौन नो मोर, दैट इज मी, वो मैं हूं, कौन आत्मा। तो जब हम अपने आप को उस रियलिटी में महसूस करते हैं कि ये शरीर एक कॉस्ट्यूम है, इसके अंदर मैं एक आत्मा हूं, और मैं आत्मा कैसी हूं, तो वो हम अनुभव करते हैं कि वी ऑल सोल्स आर पीसफुल। हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, हम सब शांत स्वरूप आत्मा हैं, और अपने को शांत स्वरूप आत्मा महसूस करना, ये ऑनेस्टी है। यदि हम अपने को ये बॉडी मानते हैं, दिस इज डिसऑनेस्टी, उसके बाद बाकी सब चीजें शुरू हो जाएंगी, When I am not this soul, तो फिर मेरा ध्यान इस शरीर पर जाता है. अभी मैं देख रही थी, please don't mind, जो मैं कहना चाहती हूँ. जब हमारे ग्रुप की बात करने के लिए हमारे दो या तीन बंदे आ रहे थे, तो जब वो कुछ कहते थे, तो उस ग्रुप के लोग इतनी अच्छी क्लाप करते थे, हमें भी अच्छा लग रहा था. तो थोड़ी ही देर में हम जितने भी लोग थे वो एक हो गए. तो अगर हम इस रियलिटी को रियलाइज करेंगे, व्हाट इज माय रियलिटी, दैट आई एम अ सोल. जब वो ग्रुप के 10 15 20 लोग हम एक हो सकते हैं, तो जब सच्चाई को हम महसूस करेंगे, मैं भी आत्मा और आप भी आत्मा, तो G20 का जो हमारे सामने उम्मीद किया गया है, कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम, तो शायद उस मॉरल को, उस एक्सपेक्टेशन को, उस एम को हम जरूर अचीव कर पाएंगे. क्योंकि हम परिवार कैसे हैं, उसका रूट कॉज क्या है, कैसे हम परिवार हो सकते हैं, तो द फर्स्ट वेरी थिंग विच वी लर्न हियर दैट हम सब कौन है, आत्मा है. तो जब आत्मिक स्वरूप से एक दूसरे को देखेंगे, ऑनेस्ट भी रहेंगे, और अपनों को देखकर बहुत पीस भी मिलती है, और सेंस ऑफ कोऑपरेशन अपने आप आता है. जहां कोई अपना होता है वहां सेंस ऑफ कोऑपरेशन अपने आप आता है. और पीस में रहने से ही दृष्टि की शुद्धता, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो हमारी मन स्थिति है इधर उधर घूमती है, तो वो जो अपवित्रता भी अराइज होती है. तो जब उस रियलिटी से हम दूर होते हैं, तो हमारी रियलिटी है मैं आत्मा हूं और आप भी आत्मा हैं. तो आत्मा का आत्मा के साथ वो पवित्र नाता है, पवित्र संबंध है. तो जितनी भी वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बात को अगर हम समझ ले, उसको रियलाइज कर ले, उस पर करना शुरू कर दें, आज से नहीं अभी से, कि मैं कौन हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं. और जब मैं अपने आप को आत्मा रूप में देखूंगी, तो जरूर सामने जो है वो भी मुझे आत्मा ही नजर आएगी. तो आत्मा आत्मा का वो पवित्र संबंध वसुदेव कुटुंबकम को जरूर बनाएगा, बिकॉज आत्मा ही परमात्मा की संतान है. आत्मा और किसी की नहीं है, केवल परमात्मा की है. तो जब हम खुद को रियलाइज करते हैं कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं, तो बहुत इजी हो जाता है अपने पिता को जानना. हम लोग सब कहते हैं व्हाट इज गॉड, वी ऑलवेज से ही इज सुप्रीम सोल, ही इज ऑल्सो सोल, बट ही इज बीइंग कॉल्ड एज सुप्रीम. तो हम सब किसके हैं, उस सुप्रीम के हैं. वो सुप्रीम जो शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं. तो जब हम आत्मा उस परमात्मा के साथ ऐसे एफिलिएट रहेंगे, हमें स्पेशल कुछ भी नहीं करना है, आज से और अभी से इस रियलिटी में रहना है. आप देख रहे हैं, बस अब कैसे देखना है, यू हैव टू सी योरसेल्फ इन सोल, मैं आत्मा हूं. और जब दूसरों को देखेंगे तो शांति और पवित्रता स्वतः ही रिफ्लेक्ट होगी. आप बोल रहे हैं, आपको वही बोलना है जो आप परिवार में बोलते हैं, ऑफिस में बोलते हैं, लेकिन व्हेन यू फील योरसेल्फ आई एम अ सोल, आई एम पीसफुल, तो आपकी बात जो आप कहते हैं वो शांति से निकलेगी. और जब आप शांत स्वरूप में हैं, तो मैं गारंटी करती हूं कि कोई भी नॉनवेज खा नहीं सकता. पीसफुल स्थिति में न आवाज ऊंची होती है, न गलत चीजें खाने की इच्छा होती है. और इस प्रकार से जो भी वैल्यूज हम आपस में यहां पर बातचीत कर रहे थे, उसको जीवन में धारण करने का केवल एक ये छोटा सा तरीका है कि हमें अपनी रियलिटी को इस प्रकार से रियलाइज करना है. और कुछ तीन चार बातें अगर हम अपने डेली लाइफ में इसको अगर पक्का कर लें, तो मैं समझती हूं जिस बैटर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं,
और बेटर वर्ल्ड से भी ज्यादा आगे कहना चाहूंगी, वो बेस्ट वर्ल्ड बन जाएगा। वो कैसे बन जाएगा कि पहले पहले हम लोगों को स्कूल में जो सिखाया गया, यहां भी चर्चा हुई थी उस बात की, अर्ली टू बैट एंड अर्ली टू राइज। सवेरे उठने की कोशिश मत करो, पहले रात को टाइम से सोने के लिए काम करना है हमको। जो रात को जल्दी सोएगा वो जरूर सवेरे जल्दी उठेगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ यस, क्लैप कर सकते हैं, लेकिन करना है, क्लैप के साथ साथ करना भी है। तो हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में जो सिखाया गया है पहले दिन से लेकर, 10 माना बस, यानी रात के जब 10 बज जाए उसके बाद हमें सो जाना चाहिए। अवश्य ही फिर 10 बजे से पहले हम 8 बजे 7:30 बजे अपना डिनर भी कर लेंगे, रात का भोजन भी खाएंगे और फिर 10:30 बजे सोएंगे, तो अवश्य ही आप सवेरे जल्दी उठ पाएंगे। और क्या करेंगे फिर, जैसे हमें स्कूल में सिखाया गया था सवेरे उठ के अपने माँ बाप के पैर छूने चाहिए, तो आज हमें पता लगा शरीर के माँ बाप के तो पैर जरूर छूने हैं, पर उससे पहले हम सदा आत्मा हैं। तो हम जो आत्मा हैं, तो पहली नमस्ते, पहली गुड मॉर्निंग, पहली राम राम उस परमपिता परमात्मा से करनी है और उस परमात्मा से अपना सच्चा संबंध अनुभव करते हुए जो भी बाकी डेली रूटीन है उसमें भी हम परमात्मा को अपने साथ रखेंगे। और बहुत जरूरी बात है, 8 बजे तक कम से कम, ज्यादा देर कर सके तो नथिंग लाइक दैट, 8 बजे तक नो न्यूज़पेपर, नो न्यूज, और जो हमारा मोबाइल है उसमें जो भी हम व्हाट्सएप और जो भी विभिन्न प्रकार के हम इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं उनको 8 बजे तक आप बिल्कुल ना करें। अगर सवेरे आप 4, 5, 6 बजे जितने बजे भी आप उठेंगे और 8 बजे तक ऐसी अच्छी चर्निंग आपके मन में रहेगी, दैट विल वर्क फॉर होल द डे। और एक बहुत आवश्यक, शायद बताया भी गया होगा विभिन्न सेशंस में, क्योंकि हर सेशन को हम उतना माइन्यूटली नहीं अटेंड कर पाए हैं, कि जब भी हम कुछ खाते हैं या पीते हैं पानी वगैरह चाय, तो खाने को एकदम हम ना खाएं, क्योंकि अब तो हमने महसूस कर लिया है कि दैट गॉड फादर इज विद अस। तो जैसे हमारे साथ कोई होते हैं, भले वो हमारा खाना नहीं भी खाते, हम ट्रेन में होते हैं, प्लेन में होते हैं, तो फिर भी हमारे साथी जो भी होते हैं हम उनको कहते हैं आप खाएंगे। तो अब भगवान को हम अपने साथ महसूस करेंगे और जो भी खाना या पानी हम पिएंगे, चाय पिएंगे, दूध पिएंगे, कॉफी पिएंगे, तो एक सेकंड के लिए उस परमात्मा को याद करेंगे, उनको ऑफर इसलिए भी करेंगे कि वो हमारे साथ हैं। और जब भगवान को हम मन के साथ जोड़ के रखेंगे तो परमात्मा की जो पावरफुल वाइब्स है, बहुत शक्तिशाली किरणें हैं, हमारी उस कॉफी में, उस चाय में, उस पानी में, उस खाने में पड़ेंगी, जो उस भोजन को, चाय को, पानी को बहुत पावरफुल बनाएंगी। और इस तरह से हमारा ब्रेकफास्ट, दोपहर और डिनर तीनों टाइम, या बीच में भी कभी कुछ खाए, तो इसी तरह से परमात्मा की किरणों को महसूस करते हुए उसको खाएंगे। और लास्ट, जब रात को सोएंगे, तो अब तक हमने भक्ति में हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया है कि वो भगवान हमारा माता पिता है, तो सारा दिन की जो भी अच्छी अचीवमेंट्स हैं या कहीं कहीं कुछ गलत भी हो गया होगा, उन सब बातों को परमात्मा के साथ शेयर करेंगे। जब हम अपनी बात किसी को बता देते हैं खुशी की या कुछ गलती की, तो खुशी हमारी बढ़ जाती है और अगर कुछ गलती होती है तो मन हल्का हो जाता है। तो गलतियां भगवान को बताकर अगले दिन ना करने का प्रॉमिस करें, और जो खुशियां हैं वो बताकर उनको दोबारा करने का परमात्मा के साथ वायदा करें, और ऐसी सुंदर यादों के साथ, परमात्मा की यादों में ही हम रात को सोएंगे, तो हमारा सवेरा भी बहुत अच्छा होगा, नींद भी बढ़िया आएगी, और हम सवेरे जब उठेंगे तो स्वयं को फ्रेश महसूस करेंगे। अगर ऐसा हम अपने साथ पक्का दिनचर्या बना लेते हैं तो जिन वैल्यूज की हम बात कर रहे थे वो सिर्फ डायस पर नहीं होंगी, वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होंगी. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि आपने इतनी पावरफुल बातें, इतनी आवश्यक बातें, इतनी जरूरी बातों को बहुत माइन्यूटली डिस्कस किया. और आप सबके लिए मैं दुआ करती हूँ, शुभ भावना रखती हूँ कि सब जो भी आपने डिस्कस किया है अच्छी बातों को, वो आपके जीवन में उतरेंगी और हमारे जो भी आसपास के सेंटर्स हैं वहां पर आप जाएंगे और उन सब बातों को और हम जिंदगी में कैसे इनकलकेट करें उसकी गाइडलाइन भी आप जरूर लेंगे. ऐसी भावनाओं के साथ ओम शांति.
थैंक्स आदरणीय दीदी जी. हम सभी भी दीदी जी को प्रॉमिस करते हैं इस सत्र के समाप्ति पर कि जो भी हमारे प्रति, हम युवाओं के प्रति आश है अध्यक्ष महोदया की, दीदी जी की, हम जरूर पूर्ण करेंगे. प्रॉमिस करेंगे ना सभी? तो एक हाथ ऊपर करके प्रॉमिस करें. थैंक यू. इस सफल सत्र के समाप्ति पर आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स भी है, विशेष रूप से हमारे जो परम पिता, उनकी प्रेरणा से हम इस आयोजन में सम्मिलित हुए. हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी, कृति दीदी जी, उनके देखरेख में, उनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ. हमारे आज के सत्र के अध्यक्ष महोदया अनुसुईया दीदी जी, इनका विशेष रूप से थैंक्स. और हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट है, जो कीनोट स्पीकर है दीदी जी, दोनों का भी बहुत बहुत दिल की गहराई से थैंक्स. और आप सभी माननीय सांसदों का विशेष रूप से दिल से इस वातावरण में, इस परिस्थिति में भी इतना अच्छी तरह से आपने अपने इनपुट्स दिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स. अंत में हम परमात्मा स्मृति में 3 मिनट बैठ के परमात्मा को थैंक्स अर्पित करते फिर सत्र को समाप्त करते.
मशाल थाम लीजिए,